राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
सभी लोग गाइए,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा
शोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन
ब्रज जन रंजन यमुनतिरवन
भगवान का नाम है
Krishna.
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
आनंद वदना कर नंदा बजुर मन श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा
श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा
नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा
नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं
कृष्ण बड़े हैं
कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं
कृष्ण बड़े हैं
जैसे तारों में चंदा बजोरे मन गोविंदा
जैसे तारों में गोविंदा
नटवर नागर बजोरे मन गोविंदा
वर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा
सब सखियन में राधा जी बड़ी है
सखियन में राधा जी बड़ी है
सब सखियन में राधा जी बड़ी है
सखियन में राधा जी बड़ी है
राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है
राधा जी बड़ी है
जैसे नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा
जैसे नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा
नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा
श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा
कर सर पर अधर यमर कर अनुसर कर पर्वत धर मेल करे हरे हर सुर हर मन हर मट लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमय घन रण पट फरड़ खरड पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी जी रंग भर सुंदर बहत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शब्द पुकारत जात पियु पियु कोकिल कंठ गिरा तव गड़ गड़ नव हो तड़ासन भरण गिरिवर शिखर बजे घन रण पट फरड़ खरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम सब बाला रूप रसाला करीबे हला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपत साला बिन दयाला नंद लाला आये नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी एन रसुखकारी मित्र मुरारी भय विसारी गिरधारी रे जिने गए विसारे गिरधारी रे जिने गए विसारे गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे
राधा गिरधारी
राधा गिरधारी राधा गिरिधारी राधे
राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे
आ जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
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 गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय
जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर
जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय
जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय
हा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
जय प्रभुपाद
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद
प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गीता गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल श्री राधा गिरधारी भगवान की श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव
नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवती नैष्ठकी ओम ज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि
श्री गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभान पीता फल धरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने यस्या कदापि वर
बसना चल खेल नो थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी योगी मधुर्गम गति मधुसूदनोपी तस्या नमोस्तु वृषभा नुभो दिशेपि आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भुरतेर्महत भी ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषपू भुङ्क्तेर्गुणनशो हषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति मंगलवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस मंगलवार प्रोग्राम का इस साल का आखिरी दिन है। इस साल का यह अंतिम कार्यक्रम है। आज के बाद हम अगले साल अर्थात एक महीने के बाद मिलेंगे, इसलिए धैर्य से कथा श्रवण कीजिए। परम सौभाग्य है कि हम सब प्रति सप्ताह में एक बार यहाँ पर भगवत कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, और उससे भी परम सौभाग्य की बात यह है कि आज परम पवित्र दिन है, क्योंकि साल के 12 महीने में 4 महीने मुख्य माने गए हैं, और इस 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, और इस चतुर्मास में यह चतुर्मास बहुत मुख्य इसलिए है क्योंकि इस चतुर्मास में भगवान की अनंत अनंत लीला हुई है, और इन 4 महीनों में आज से जो महीना शुरू हुआ है जिसे दामोदर महीना कहते हैं, कार्तिक मास, हमारे इस्कॉन के हिसाब से आज से कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। तो इस महीने में कार्तिक महीने में भगवान की बहुत बहुत लीला हुई है। प्रायः कृष्ण की माधुर्यमयी जो लीला है वो इस कार्तिक महीने में हुई है और आज से इस्कॉन के सभी मंदिरों में, सभी सेंटरों में सुबह और शाम भगवान कृष्ण की एक अद्भुत लीला का गान किया जाता है। वैसे तो कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, परंतु इस कार्तिक मास में दामोदर महीने में होने वाली जो दामोदर लीला है, उखल बंधन लीला, ये भक्तों को बहुत अच्छी लगती है और भक्त इस लीला को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस लीला में भक्त के द्वारा भगवान बंधे गए हैं। वैसे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान की जो शक्ति है भिन्ना प्रकृति अष्टधा, आठ प्रकार की भगवान की शक्ति गीता में वर्णन किए हैं। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, हे अर्जुन अहंकार इति यम्मे, ये आठ प्रकार की जो शक्ति है ये मेरी है। भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान की शक्ति को कोई मान नहीं सकता है। भगवान की एक शक्ति है हवा, हवा को कौन बांध सकता है? परंतु भक्त के द्वारा इस लीला में भगवान बांधे गए हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए प्राय भक्त समाज, वैष्णव समाज इस दामोदर लीला को बहुत पसंद करते हैं और बंधे हुए भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज से चूंकि हमारे इस्कॉन मंदिरों में यह दामोदर लीला का प्रतिदिन सुबह और शाम गान किया जाता है और इस महीने में यह लीला हुई है, इसलिए आज यह अंतिम कार्यक्रम में भगवान की दामोदर लीला का हम वर्णन करेंगे। प्रायः भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, यह लीला भागवत के दसम स्कंध में रखी गई है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंध है और यह 12 स्कंधों का जो सार है वो है दसम स्कंध। और यह दसम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का वर्णन है। प्राय हम सब भक्तों को भगवान की लीला का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम करना। रोज सुबह यदि आप मंगला आरती में जाते हो तो अंत में यही कहा जाता है, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जो कि है श्री कृष्ण प्रेम। मनुष्य जीवन की सार्थकता उसमें है कि वह कृष्ण से प्रेम करे। तो कृष्ण से प्रेम व्यक्ति कैसे कर पाएगा? कृष्ण से यदि प्रेम करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उस कृष्ण के बारे में सुनो। सुनने से प्रेम प्रकट होता है, और कोई उपाय से प्रेम इतना जल्दी प्रकट नहीं होता है जितना सुनने से प्रेम होता है। अब देखिए शास्त्र में अनंत दृष्टांत है और एक ज्वलंत प्रमाण आज से 5000 वर्ष पूर्व रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा। रुक्मणी जी का विवाह था और विवाह के अगले दिन पत्र लिखा कृष्ण को। वो पत्र भागवत में एज इट इज सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, 8 श्लोकों में वो पत्र है। रुक्मणी जी लिखते हैं, हे कृष्ण, कृष्ण मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु मेरा भाई आपसे प्रेम आपसे विवाह कराना नहीं चाहता है। यदि कल आप मुझे आकर नहीं लेकर गए, आप मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। कृष्ण के मन में प्रश्न हुआ कि यह इतना समर्पित मुझे कैसे हो गई। रुक्मणी जी ने पत्र में यह भी लिखा कि कृष्ण, यद्यपि मैंने आपको देखा नहीं है, संसार में लोग विवाह करते हैं तो 10-15 बार लड़की को देखने जाते हैं, ड्रेस पहना कर देखते हैं, साड़ी पहना कर देखते हैं, बात करके देखते हैं, चला करके देखते हैं। रुक्मणी जी लिख रही हैं कि कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु आपके बारे में मैंने सुना है। बड़े बड़े नारद जी और ऋषि मुनियों के द्वारा आपके बारे में सुना है, आपके बारे में सुनने मात्र से मैं आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया। भक्तों, निश्चित कृष्ण से प्रेम करना है तो उनके बारे में सुनना होगा। कृष्ण लीला सुने बिना कृष्ण से प्रेम हो ही नहीं सकता। परंतु कुछ भक्तों का दुर्भाग्य है जो कृष्ण लीला सुनना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते भी हैं तो कुछ प्रचारक ऐसे कहते हैं कि यह दशम स्कंद हमारे लिए नहीं है, ये दशम स्कंद तो बहुत बड़े लोगों के लिए है, ये तो बाद में सुनना चाहिए। परंतु भक्तों, ये बात जीवन में कब आएगा कोई भरोसा नहीं है, कल सुबह तक हम जी पाएंगे या नहीं यह भी भरोसा नहीं है, आज नहीं सुनेंगे कृष्ण की लीला तो कब सुनेंगे बताइए। प्राय कुछ लोग का ऐसा मत है ये दशम स्कंद हमारे लिए नहीं है, दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। परंतु भक्तों, हमारे संस्था के आचार्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद जब इस भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, भागवत का अनुवाद कर रहे थे, तीन कैंटों का अनुवाद करके वे विदेश में गए, और जब इसका प्रचार करने लगे तो पांचवे छठे सातवें कैंटों तक पहुंचे तो प्रभुपाद जी के मन में बहुत बड़ा प्रश्न उठा, क्योंकि प्रभुपाद जी तब 70 साल से भी ज्यादा आयु थी उनकी, और उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यदि मैं भगवत धाम जाने से पहले दशम स्कंद नहीं लिख सका तो इस इस्कॉन में आने वाले भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीला से विमुख रह जाएंगे, इसलिए स्पेशल भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने अपने भागवत का अनुवाद थोड़ी देर रुकाकर एक नए ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ में केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है, और उस ग्रंथ का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। 80 से भी ज्यादा भगवान की लीला प्रभुपाद जी ने उसमें लिखी है। प्रभुपाद जी का एक ही इंटेंशन था, एक ही तात्पर्य था कि मेरे जाने से पहले यदि भागवत का अनुवाद नहीं हो चुका, दशम स्कंद में न पहुंच चुका, तो कम से कम ये कृष्णा बुक तो पढ़ेंगे, ये कृष्णा बुक पढ़कर व्यक्ति कृष्ण के पास भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रतिदिन व्यक्ति को शाम को सोने से पहले यह कृष्णा बुक का एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल हमारे जीवन में बताया, इस चीज को गंभीरता से हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। असल में प्रभुपाद जी एक ऐसे संत थे जो पूरे विश्व के लिए चिंतित थे, उनके मन में यही प्रश्न था कि यह विश्व के लोग कैसे भगवत धाम प्राप्त करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें ये भगवान श्री कृष्ण की लीला रूपी ग्रंथ प्रदान किया है। तो बताइए प्रभुपाद जी यह दशम स्कंद का ग्रंथ स्पेशल अनुवाद करके गए हैं तो कुछ भक्त कहते हैं इसे नहीं पढ़ना चाहिए, बताइए कितना दुर्भाग्य है उन भक्तों का। खैर भक्तों, जो भी हो एन के एन प्रकारण कृष्ण से प्रेम करना है तो कृष्ण की लीला सुनना बहुत आवश्यक है, और चाहे कोई कुछ भी कहे हम तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे बाप है और बाप का पुत्र होता है तो पुत्र का अधिकार होता है अपने पिता के ऊपर, पुत्र अपने पिता के बारे में कुछ भी बोल सकता है, अपने पिता के जो भी कर्तव्य है जो भी कार्य है उसके बारे में बोलना उसका अधिकार है। कोई व्यक्ति आकर यह नहीं कह सकता कि अरे आप अपने पिता के बारे में इतना अच्छा अच्छा नहीं बोल सकते। मान लीजिए किसी के पिता ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, कोई उनका लड़का यदि अपने पिता की प्रशंसा करे कि मेरे पिता ने ये किया मेरे पिता ने ये किया, तो 2-3 लोग आए अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी मूर्खामी है। पिता का गुणगान करना यही पुत्र का कर्तव्य होता है और यही पुत्र का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण हमारे परम पिता है, और हमारे परम पिता हम कृष्ण के पुत्र है, इसलिए हमारा अधिकार है कि हम कृष्ण के बारे में सुने पढ़े और इसको जीवन में धारण करें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की एक विशुद्ध लीला का हम आज श्रवण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन परीक्षित महाराज को किए हैं, और इस लीला की भूमिका में आचार्य जीव गोस्वामी और श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को अन्य अन्य राजा महाराजाओं की कथा सुनाई और राजा महाराजाओं की कथाओं के साथ कृष्ण के जन्म की लीला सुनाई। कृष्ण के जन्म की लीला सुनाने के बाद कृष्ण गोकुल में कैसे गए यह लीला सुनाई। तत्पश्चात गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया, अगले जन्म में जो द्रोण और धरा थे, यह भी कथा सुनाई। परंतु फिर भी परीक्षित महाराज को तृप्ति नहीं हो रही थी। कृष्ण की पूतना वध लीला, अघासुर वध लीला, शक्तासुर लीला, यह सब लीला सुनाए फिर भी परीक्षित महाराज को तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण की वीर रस की लीला सुनाए, कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट किए। परीक्षित महाराज की इच्छा कृष्ण की माधुर्यमय लीला सुनने की थी। कृष्ण की वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में कृष्ण ने जो लीला की है, वह लीला सुनने की प्रबल इच्छा परीक्षित महाराज की थी। सुखदेव गोस्वामी इसे देख लिए और सुखदेव गोस्वामी जैसे ही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को देखे, यह समझकर सुखदेव गोस्वामी भागवत के दसम स्कंद के नवम अध्याय में प्रारंभ करते हैं। एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एकदा, एक समय की बात है। अब एकदा एक शब्द में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कह दिए, श्री शुक वाच एकदा गृह दासीषु। अच्छा, एकदा एक समय, तो प्रश्न होता है किस समय, किस समय की बात है। सुखदेव गोस्वामी एक घटना का वर्णन करने जा रहे हैं, तो ये कब की घटना है। एक का अर्थ होता है एक, दा का अर्थ होता है समय। एक समय की बात है, तो वह किस समय की बात है। तो आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि ये उस समय की बात है, दामोदर कार्तिक मास चल रहा था और कार्तिक मास के दिन दीपावली का दिन था, दिवाली जो आने वाली है। ये दिवाली के दिन की लीला मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं, दिवाली के दिन की यह घटना है। तो दिवाली के दिन की यह बात है, इसलिए कहते हैं एकदा दिवाली के दिन एक समय गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी, जो नंद की गेहिनी, नंद महाराज की जो पत्नी है, उसका नाम क्या है, कहते हैं यशोदा। अब यशोदा का भी आचार्य शिपा श्रीधर स्वामी, जीव सनातन इत्यादि बहुत बहुत अर्थ करते हैं। यशोदा का अर्थ क्या होता है, यशोदा का अर्थ, यश का अर्थ तो आप जानते ही हैं, कीर्ति, और दा का अर्थ होता है देना। जिस जो कीर्ति प्रदान करती है, जो सबको, जो पूरे जगत में फेमस है, जो पूरे जगत में प्रचलित है, उसे यशोदा कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न यह होता है, तो यशोदा क्यों फेमस है, क्योंकि वे कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के भक्त की कीर्ति अजर अमर रहती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के अवतार साक्षात कृष्ण ही आज से 523 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते करते रामानंद राय को मिले और राय रामानंद को चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछे, इस संसार में सबसे बड़ी कीर्ति क्या है। जगत में कीर्ति आप जानते हैं, फेम, यश, तो इस संसार में सबसे बड़ी कीर्ति क्या है बताइए। यदि हम होते तो कहते हैं डॉक्टर बन जाना है सबसे बड़ी कीर्ति है, क्योंकि सब लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे वकील बन जाना सबसे बड़ी कीर्ति है, कुछ लोग कहेंगे नेता बन जाना बहुत बड़ी कीर्ति है, कुछ लोग कहेंगे हीरो बन जाना बहुत बड़ी कीर्ति, कुछ लोग कहेंगे क्रिकेटर बन जाना, कुछ लोग कहेंगे पैसे वाला धनी बन जाना, ये बहुत बड़ी कीर्ति है। परंतु राय रामानंद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़ी कीर्ति यह नहीं है कि कोई धनी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, क्योंकि यह सब कीर्ति कब तक रहती है बताइए। एक डॉक्टर कब तक डॉक्टर रहता है? पहले तो आधा जीवन तो डॉक्टर की डिग्री लेने में निकल जाता है और फिर 30-40 साल तक वो डॉक्टर ही करता है, मर जाता है। मरने के बाद वो कहां जाकर गधा बनता है वो निश्चित नहीं है। ये डॉक्टर की कीर्ति केवल 30-40 साल तक रहती है। वकील कब तक व्यक्ति काला कोट कब तक पहनेगा? कुछ लोग कहते हैं धनी की कीर्ति, वह धनी धन कब तक हाथ में रहेगा बताइए? या तो धन कभी ना कभी छोड़कर चला जाएगा या हम धन को छोड़कर चले जाएंगे। तो सब लोग इसे कीर्ति यश मानते हैं। यह कीर्ति कब तक रहती है? 40-50 वर्ष तक। परंतु राय रामानंद कहते हैं कि कृष्ण भक्त बलिया जो गले में कंठी और भाल में तिलक धारण करता है और मुंह में महामंत्र जपता है, ऐसे भगवान के भक्त की कीर्ति जन्मों जन्मों तक रहती है। क्योंकि आप देखिए, इतिहास खोलकर देख लीजिए, गांधी जी का नाम एक दिन सभी न्यूज़पेपरों में था, लेकिन आज गांधी जी को कोई पूछता भी नहीं है, गाली देते हैं सब लोग। कहां गई गांधी जी की कीर्ति बताइए? एक दिन विश्व के पेपर में कपिल देव का नाम था, बहुत अच्छे बॉलर और क्रिकेटर। आज कहां है कपिल देव? आज जिंदा है, रास्ते भी निकलेगा कोई देखेगा भी नहीं उनके सामने। कहां है उनकी कीर्ति बताइए? एक से एक धनी आ गए लेकिन कोई नहीं रहा, किसी की कीर्ति नहीं रही। सहस्त्र बाहु दश वदन आद नहीं तो बचे न काल बलिते। इस संसार में एक से एक राजा महाराजा प्रतापी अतिरथी महारथी आए, परंतु किसी की कीर्ति नहीं रही। प्रहलाद महाराज भी इस बात को कहते हैं, हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। ये लोग बहुत एकत्रित किए, धन एकत्रित किए, पद बढ़ाए, अपना मान बढ़ाए, कीर्ति बढ़ाए, परंतु अंत में सब लोग मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं बचा। वे भी मिट्टी में मिल गए, उनकी कीर्ति भी चली गई, कोई नहीं बचा। परंतु देखिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हजारों युग के युग बीत गए, लेकिन आज भी यदि प्रहलाद का नाम आता है तो 5 साल के प्रहलाद को भी प्रहलाद महाराज कहा जाता है। बताइए, इसे कीर्ति कहते हैं। भजन करने वालों की कीर्ति जीवन अनंत अनंत जन्मों तक अजर अमर रहती है। कीर्ति इसे कहा जाता है कि एक दीवार के ऊपर यदि कोई चित्र बनाया जाए, जैसे वहां पर है आपको बोर्ड दिख रहे हैं हरे कृष्णा लिखा है, उसके ऊपर यदि आपने चौक से लिख दिया है तो पानी से कपड़ा मारोगे तो वह निकल जाएगा। परंतु दीवार के ऊपर यदि कोई चित्र बनाया जाए तो वह चित्र तब मिट सकता है जब दीवार गिर जाएगी। तो दीवार के ऊपर किए हुए चित्र एक बार गिर सकते हैं, परंतु किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने किए हुए कर्म की कीर्ति कभी गिरती नहीं। मनुष्य मर जाता है, चला जाता है, परंतु उनके किए गए कार्यों की कीर्ति कभी गिरती नहीं। इसलिए आज भी आप देखिए, आज भी यदि पूछा जाए तो गुजरात में जो जूनागढ़ नाम का देश है, शहर है, पूछा जाए जूनागढ़ किसका है, तो एक ही स्वर निकलेगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़। आप देखिए, मारवाड़ में अनेक राणा आए और राज करके चले गए, परंतु पूछा जाए मारवाड़ किसका, तो कहेंगे मीराबाई का मारवाड़। पोरबंदर में अनेक अनेक राजा आए, नेता आए, चले गए, परंतु पोरबंदर किसका, तो कहेंगे पोरबंदर सुदामा का पोरबंदर। क्या था सुदामा के पास बताइए? किसी ऑफिस में नहीं जाते थे, कहीं नौकरी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आज पोरबंदर का नाम लेते ही सुदामा का नाम प्रथम आता है। भक्तों, धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर बनना, वकील बनना, पढ़ा लिखा बन जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना। भगवान श्री कृष्ण की यदि भजन भक्ति करोगे तो निश्चित यश बढ़ेगा संसार में। इस भौतिक जगत में भी लोग आपके चरण चूमेंगे। आप देखिए, मेरी उम्र केवल 26-27 साल की है। मैं मेरा दृष्टांत देता हूं, कुछ नहीं है, बुद्धि में कुछ है नहीं, भक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ 2-1 घंटा बोल लेते हैं, कुछ माला जप कर देते हैं, व्यासपीठ से उतरते हैं तो हजारों लोग चरण पकड़ते हैं। क्यों, क्या है इसमें? कुछ नहीं रखा है खोखले देह में, परंतु भक्ति में यह प्रताप है, भक्ति की यह शक्ति है, सामने वाले को झुका देती है भक्ति। नहीं तो क्या वैल्यू है हमारी, बताइए? कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति के सामने झुक जाती, दुनिया झुकती है। तो भक्तों, इस दुनिया में यदि यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति करनी चाहिए। सभी भक्तों को कथा सुनने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको याद है मैं किस शब्द से बोल रहा हूं? किससे? यशोदा से। यशोदा से मैंने प्रारंभ किया था। तो यशोदा का नाम इसलिए यशोदा हुआ क्योंकि उनका यश पूरे भूमंडल में प्रचलित है, क्योंकि वे कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के भक्त की कीर्ति अजर अमर रहती। तो एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी, ऐसी माता यशोदा। एक दिन की बात है, दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन यशोदा मैया के घर पर गृह दासीषु अपनी जितनी भी दासियां थी, ये सभी दासियों को कर्मांतर नियुक्त आसु। यशोदा ने अपनी सभी दासियों को कर्मांतर सभी कामों में व्यस्त कर दिया। तब सुखदेव गोस्वामी तो इतना कह के छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, लेकिन हमें तो इसका आस्वादन करना है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहे हैं, भक्ति के 64 अंग हैं, परंतु उसमें जो 5 अंग है वो मुख्य है। और उस 5 अंग में सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु कहे के साधुओं का संग करना और भागवत के अर्थ का आस्वादन करना। भागवत को पढ़ जाना ये ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, परंतु विशेष रूप गोस्वामी ने इसके ऊपर लिखा है कि भागवत के एक एक शब्द का आस्वादन करते चलोगे तो कृष्ण प्रेम बहुत जल्द प्रकट होगा। कुछ लोग कहते हैं, प्रभु जी आप इतनी छोटी उम्र में इतना कैसे आगे बढ़ गए? ये हमें कुछ नहीं है, परंतु हमने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को जीवन में धारण किया है। रूप गोस्वामी ने जो उसके ऊपर लिखा है जीवन में उतारा है, नहीं तो 10 मिनट में यह कथा हो सकती है। कृष्ण ने चोरी की, यशोदा जी ने पकड़ा, उसे उखल से बांध दिया और फिर कृष्ण वहां से निकले, उखल को घसीटते घसीटते आगे गए और उनके आंगन में यमलार्जुन नाम के वृक्ष थे, दोनों को गिरा दिया। बोले दामोदर लीला की जय। हो गई। प्राय संसार में सब लोग करते हैं, ये भी ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, परंतु यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हृदय को पवित्र करना है, तो इस सुखदेव गोस्वामी के एक एक श्लोक के ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत लिखा है। मैं आपको बताऊं, इस एक श्लोक के ऊपर 15 आचार्यों ने टीका लिखी है, पत्ते भर भर के, सब संस्कृत में। श्रीपाद श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, बहुत बहुत वल्लभाचार्य जी ने बहुत बहुत टीका लिखी हुई, लेकिन ये सब का तो हमारे पास समय नहीं है, परंतु आप संक्षिप्त में ही समझिए क्योंकि एक दिन में हमें कंप्लीट करना है, नहीं तो ये एक लीला के ऊपर हम 7 दिन प्रवचन कर सकते हैं और 7 दिन भी कम गिरेंगे, क्योंकि एक एक वस्तु, जैसे आपने यशोदा शब्द सुना तो उसमें कितना कुछ आ गया। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक एक शब्द का आस्वादन करते हुए भगवान की लीला सुननी चाहिए, क्योंकि केवल लीला सुनोगे तो हो सकता है आप भगवान की लीला के प्रति अपराध कर बैठोगे। इसलिए लीला के साथ साथ आचार्यों ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को भी सुनते हुए चलना चाहिए। तो बहुत सुंदर आचार्य गण कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि दिवाली के दिन यशोदा मैया ने सभी दासियों को घर के अलग अलग कामों में लगा दिया। तो प्रश्न होता है कितनी दासियां थी, तो हम इस पे यदि मनन करें तो नंद बाबा गोकुल के राजा थे, नंद राज, क्योंकि नंद बाबा के पास 900,000 गाय थी और उन दिनों जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो सबसे ज्यादा धनी माना जाता था। नंद बाबा के पास 900,000 गाय थी, सबसे राजा थे। 900,000 गाय का पालन करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी, एक गाय यदि यहां से किसी को दी जाए उसको नहलाना धुलाना घास चारा देना दूध निकालना पूरा ध्यान रखना और कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो 9 लाख गायों का ध्यान रखने के लिए कितने नौकर चाकर इत्यादि चाहिए। तो नंद बाबा के घर पर कई सारे दास और दासियां थे। तो श्रीपद वल्लभाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं कि नंद बाबा के घर पर 4 प्रकार की दासियां थी। 1 प्रकार की दासी कृष्ण को कृष्ण की सेवा करने के लिए और घर में झाड़ू पोता देने के लिए, जैसे होते ना घर पर बालकों को रखने के लिए बेबी सीटिंग। बेबी सीटिंग आजकल का नहीं है, 5000 वर्ष पहले का है। तो 1 प्रकार की दासियां कृष्ण को संभालने के लिए और झाड़ू पोता करने के लिए, 2 प्रकार की दासियां गायों का ध्यान रखने के लिए, 3 प्रकार की दासियां नंद बाबा का जो खेत था उनकी रखवाली करने के लिए, और 4 प्रकार की दासियां घर में भोजन दही दूध मक्खन इत्यादि ये सब निकालने के लिए। तो 4 प्रकार की अलग अलग दासियां थी। यशोदा मैया ने ये 4 प्रकार की दासियों को अपने अपने कामों में लगा दिया। अच्छा ठीक है, सब लोग अपने घर पर दासियां होती हैं, तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, तो इस बात को भागवत में कहने की क्या जरूरत थी? परीक्षित महाराज के जीवन में केवल 2 दिन बचे हैं अभी, और कोई मर रहा है और यह कहने की क्या आवश्यकता है कि सभी दासियों को कामों में लगा दिया? तो उसके पीछे बहुत भाव है। हमारे आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि यह इसलिए लिखा गया है, यशोदा मैया ने दासियों को सेवा में इसलिए लगाया क्योंकि उस दिन घर पर बहुत काम था। क्यों काम था? क्योंकि ब्रज वृंदावन में गोकुल में दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा की जाती थी, और प्राय कई पीढ़ियों से यह इंद्र की पूजा दिवाली के दूसरे दिन सब ब्रजवासी करते थे। तो इंद्र की पूजा करने के लिए बहुत बहुत व्यंजन भोजन साधन सामग्री इत्यादि बनाना था, और इंद्र की पूजा इसलिए ब्रजवासी करते थे क्योंकि ब्रज में सब लोग गाय के ऊपर निर्भर थे, और गाय के ऊपर यदि निर्भर थे तो गाय के को खाने के लिए घास चाहिए, और घास तब उग सकता है जब ठीक से बारिश हो, और बारिश करने वाले इंद्र है, इसलिए इंद्र को प्रसन्न रखना। तो ऐसा विश्वास था गोकुलवासियों का कि इंद्र को हम प्रसन्न रखेंगे तो वह ठीक से बारिश करेंगे और हमें घास मिलेगा और हमारी गाय ठीक से दूध देंगी। इसलिए दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की बहुत बड़ी भव्य पूजा होती थी। तो दिवाली के दूसरे दिन कई सारे व्यंजन बनाने थे, तो कुछ दासियों को उसमें लगाया, और आप जानते होंगे कई माताएं दिवाली नजदीक आ रही है तो घर साफ करती हैं, साफ सफाई के गुजरातियों में ज्यादा होता है, तो घर को साफ करने में कई दासियों को लगाया कि आप सब साफ सफाई करो। तो एन के न प्रकार रहने यशोदा मैया ने सभी दासियों को अलग अलग कामों में लगा दिया। तो यशोदा मैया कौन सा काम कर रही थी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कर्मांतर नियुक्त आसु, सभी दासियों को अलग अलग काम में लगा दिया और स्वयं निर्म मंथम स्वयं दधि। यशोदा स्वयं क्या करने लगी? दही को मथने लगी स्वयं। अब देखिए यहां पर भी आपके पास श्लोक नहीं है, नहीं तो आपको बहुत और आनंद आता। अब निर्म मंथम स्वयं दधि, इतना सुखदेव गोस्वामी कह दिए। तो यहां पर जो स्वयं शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी कह सकते हैं यशोदा मैया निर्म मंथम दधि दही को मथने लगी, परंतु यहां पर स्वयं शब्द दिया है, यशोदा स्वयं दही को मथने लगी, इसका अर्थ है कि यशोदा जीवन में पहली बार दही को मथ रही है, क्योंकि स्वयं पहली बार स्वयं कर रही है। आज तक दही को मथा जाता था परंतु सब दासियां यह कार्य करती थी, परंतु यशोदा आज जीवन में पहली बार दही को मथ रही हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी स्वयं शब्द लगा रहे हैं, निर्म मंथम स्वयं दधि। तो और एक प्रश्न बनता है, आप इसमें उलझ तो नहीं रहे हो? नहीं तो मैं फास्ट आगे बढ़ूंगा। तो आपको लगे प्रभु जी क्या करने लगे? ठीक, तो आनंद लूटिए बस, केवल ऐसा नहीं कि याद रखना है सब कुछ, केवल सुनते रहिए और यह कल्पना कीजिए, यह भाव कीजिए कि हम भी ब्रज वृंदावन में हैं, यशोदा को देख रहे हैं, तो यशोदा मैया स्वयं दही को मथने लगी, क्यों? आज यशोदा मैया को ऐसा क्यों हो गया स्वयं दही मथने लगी, कारण क्या है? तो इसका कारण भागवत के अगले अध्यायों में बताया गया है कि दिवाली के कुछ दिन पहले ब्रज वृंदावन की सभी गोपियां मिलकर मीटिंग करके यशोदा मैया के घर पर आई, और यशोदा मैया के घर पे आकर यशोदा को बहुत बहुत शिकायत करने लगी कृष्ण की कि कृष्ण दो पैर से चलना सीख गए थे और ब्रज वृंदावन में अपना उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिए थे। तो यशोदा मैया के पास सभी गोपियां, सभी ब्रज वृंदावन की छोटी बड़ी सब गोपियां आई और शिकायत करने लगी। शिकायत क्या थी? भागवत में एज इट इज दिया गया है गोपियां ने क्या कहा था। गोपियां शिकायत करने लगी कि मैया मैया हम आपसे हाथ पांव जोड़ रही हैं, इस गोकुल में ब्रज वृंदावन में या तो हम रहेगी या तो आपका काना रहेगा, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं, या तो आप ये छोड़कर चली जाओ या हम गोकुल छोड़ के चली जाती है। यशोदा मैया ने पूछा बताओ हुआ क्या है। तब गोपिया कहती क्या बताए, हम लोग घर पर कुछ काम में व्यस्त रहती हैं, उतने में कृष्ण हमारे घर पर आंगन में आ जाता है और जहां पर गाय और बछड़ों को बांधा जाता है वहां पर घुस जाता है और वहां घुसकर सभी बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े अपने अपनी माता गाय के दूध पी लेते हैं। बताइए बछड़ों को तो थोड़ा ही दूध पिलाया जाता है, दूध तो हमें बेचना है पीना है, बछड़े सारे अपने गाय का दूध पी जाते हैं, हमारे लिए कोई दूध नहीं बचता। तब यशोदा मैया कहती अच्छा इतना छोटा सा कृष्ण इतना बड़ा कार्य करता है, चलो ठीक है वो बछड़े को छोड़ भी देता है तो कृष्ण को डांटना चाहिए, तुम डांटो। दो चार गोपी आकर कहती हैं यशोदा मैया क्या बताए, हम डांटती है तो ये उल्टा हमको डांटता है, पता है ये लगता है ये छोटा है परंतु इसकी बुद्धि बहुत बड़ी है, जैसे ही हम कहते हैं कि हमारे बछड़ों को क्यों छोड़ा तो ये उल्टा हमें डांटता है कि इतना क्यों चिल्ला करके कहती हूँ, मैंने मेरे बछड़े को छोड़ा है कि तुम्हारे बछड़े को छोड़ा है, अरे तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो बछड़ा तुम्हारा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान होगा, इतना डांट करके हमें चुप करा देता है। और दो चार गोपी आगे आकर कहती है क्या बताए मैया, इतना नहीं जब हम बछड़े को बांधने के लिए वहां जाती है तो ये तुरंत अंदर घर में घुस जाता है, और घर में घुसकर क्या बताए, पहले तो ये मक्खन की मटकी ढूंढता है और यदि इसे मक्खन की मटकी न ढूंढे न मिले तो ये बहुत गाली देता है, इतना श्राप देता है कि ये लोग मर जाए, ये लोग दरिद्र हो जाए, साले मक्खन नहीं बनाते हैं, इतनी हाय देते हैं, इतनी हाय देता है, और उसे कुछ नहीं मिलता है तो हमारे सोए हुए बच्चों को चिमटी पकड़कर या थप्पड़ मारकर कैसे भी करके रुला करके चला जाता है। ये सब भागवत में सारी शिकायत, आप कभी भागवत दशम स्कंद पढ़िए, ये सारी शिकायत लिखी हुई है सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। कुछ गोपियां यशोदा मैया को शिकायत करती हैं कि ये काना ये कृष्ण हमारे घर पे घुसकर मटकी को उतार कर उसे मक्खन खाता है। यशोदा मैया ने कहा अच्छा ऐसा, मेरे घर पे 9 लाख गाय है, मक्खन में तुम लोग स्नान कर सको उतना तो मक्खन हमारे घर पर है, इतना सारा मक्खन छोड़कर वो तुम्हारे घर पर चोरी करने आएगा, इस पर विश्वास हो ही नहीं सकता है। इतना जब यशोदा मैया ने कहा तो पीछे से कृष्ण गोपियों के सामने ठेंगा दिखाते हैं, देखा ये मेरी मैया है, ये तुम्हारी बात में नहीं आने वाली है, ये मेरी मैया है। फिर भी सारी गोपियां जब शिकायत करती हैं कि ये हमारे घर पर आता है मक्खन चोरी करता है, तो यशोदा मैया ने कहा एक काम करो, आपको अपनी मक्खन वाली मटकी को अंधेरे कमरे में रखना चाहिए। कुछ गोपियां कहते हैं यह भी करके देखा, यशोदा जी हम अंधेरे कमरे में ही हमारी मटकी रखती हैं, परंतु आपने इस कृष्ण को जो पद्मराग मणि पहनाया है, ये जो इसके गले में कौस्तुभ मणि है उसमें इतनी चमक है कि यह अंधेरे कमरे में आता है तो उसमें भी लाइट हो जाती है, तो इस मणि के प्रकाश से वे पूरा कमरे में उजाला हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये कैसे भी करके मटकी को उतार कर उससे मक्खन चुरा लेता है। इसलिए मैया ने कहा कि तू उस मटकी को ऊपर बांधना चाहिए। कुछ गोपियां कहते हैं यह भी करके देखा, जब ऐसे हम ऊपर बांधती है तो ये उखल लेकर आता है, टेबल लेकर आता है, उसके ऊपर चढ़कर मटकी को उतार लेता है। यशोदा मैया ने कहा और ऊपर बांधना चाहिए, तो कुछ गोपियां कहती हैं यह भी करके देखा। ऐसा जब करके देखा तो ये कृष्ण बहुत लंबी लकड़ी ढूंढता है और लकड़ी लेकर आता है, वो मधुमंगल वो जो लंगड़ा सखा है इसके साथ सुदाम इत्यादि, उसके पास लकड़ी होती है तो लकड़ी से उस मटकी को फोड़ देते हैं। और क्या बताए, दिखता बहुत छोटा है परंतु कितनी बुद्धि है इसमें। मटकी को पूरा नहीं फोड़ते हैं ये लोग मटकी को बीच में से एक छोटा सा हॉल करते हैं और जैसे उसमें से मक्खन दही निकलने लगता है तो सब लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। सब लोग इज्जत से चोरी भी करते हैं, इतना इज्जत से करते लाइन में खड़े रह जाते हैं और मुंह ऐसे करके डायरेक्ट मुंह में आता है और सब लोग का पेट भर जाए तो वन बाय वन करके सब लोग पी लेते हैं। और हे मैया, ये बालक लोग मक्खन खाएंगे, कितना खाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, ये कृष्ण आपका कृष्ण मक्खन खाए, लेकिन ये अकेला नहीं आता है, ये अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर आता है। ठीक है, और सब बालक मक्खन दूध इत्यादि खाए तो कोई बात नहीं, परंतु इसकी टीम में बंदर भी है, बंदरों को खिलाता है। मैया आप इसका कुछ करो, हम तो थक गई हैं आपके लाला से। यशोदा मैया ने कहा एक काम करो, अपनी मटकी को और ऊपर छत के ऊपर बांध दो। तो कुछ गोपियां कहती हैं यह भी हमने करके देखा, जब बहुत ऊपर बांधती हैं तो ये लोग चार पांच लोग नीचे खड़े रह जाते हैं, उसके ऊपर तीन लोग खड़े रहते हैं, उसके ऊपर दो, और सबके ऊपर आपका ये काना होता है, ये कृष्ण सबके ऊपर खड़ा रहकर उस मटकी को फोड़ता है। सब लोग खाते हैं, खाते तो हैं लेकिन खाने से ज्यादा तो मक्खन को बिगाड़ते हैं, यहां वहां फेंकते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। क्या बताएं, हम तो इससे थक गई हैं, कृपया करके आप इस गोकुल को छोड़कर चली जाओ या हम चली जाती हैं, नहीं तो आप अपने काना को ठीक से समझाओ। इतना शिकायत करके सारी गोपियां चली गई। यहां पर यशोदा मैया मन ही मन में सोचने लगी कि यह कृष्ण इतनी छोटी सी उम्र से चोरी करने लगा है। पता है ना, आज की साधारण माँ भी, मान लीजिए कोई बालक स्कूल से किसी का रबर चुरा कर लाया है या पेंसिल चुरा कर लाया है तो माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि आज रबर चुराया है, कल किसी का बैग चुरा लेगा, परसों किसी का धन चुरा लेगा, तो माता को बहुत टेंशन होता है। और यशोदा मैया तो कृष्ण की माँ है, माँ के भाव में। यशोदा मैया मन ही मन में सोचने लगी कि ये आज मक्खन चुराता है, दूध दही चुराता है, कल किसी लड़की को चुरा लेगा, परसों और किसी को चुरा लेगा, अच्छा है इसे कुछ समझाना चाहिए। और यशोदा मैया के मन में यही प्रश्न था कि ये अपने घर का मक्खन छोड़कर गांव के का माखन क्यों खाता है, इतना अच्छा मक्खन हमारे घर पर है, इतनी सारी गाय हमारे घर पर है, घर को छोड़कर दूसरे के घर में चोरी करके क्यों खाता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। जिनके घर पर करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है वे दूसरे के पास से धन क्यों मांगे। परंतु भक्तों सिद्धांत यह है कि भगवान को इस चोरी करने की लीला में बहुत आनंद आता है और भगवान कृष्ण को जितना आनंद आता है उससे करोड़ों गुना आनंद जिसके घर पर चोरी होती है उस गोपी को आता है। भगवान यह लीला अपने लिए नहीं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ब्रज वृंदावन में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान किए, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी प्राय मैं कहता हूं। आज एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसा धर्म है, तपस्या कर करके इसका हृदय इतना कठोर हो चुका है, भाव और रस को बिल्कुल भूल गए। कहते हैं कृष्ण आपके भगवान है, हमारे भी है नहीं लेकिन बनने वाले हैं। तो हम प्रश्न पूछते हैं क्यों, अभी नहीं है भगवान तुम, कृष्ण तुम्हारे भगवान नहीं है? तो वे कहते हैं अभी तो वे जेल में नरक में है। अच्छा, कृष्ण नरक में क्यों भाई, उन्होंने क्या किया? तो कहते हैं कृष्ण ने बहुत चोरी की थी ना, इसलिए उसे नरक में जाना पड़ा। तो बताइए उस मूर्खों को क्या कहा जाए, उसमें हृदय ही नहीं है, भाव रस ही नहीं है उसमें। कृष्ण चोरी किए तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। आप इतनी सी अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलकर देखिए, कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले चोरी की थी, उस चोरी करने की लीला को सुनने में कितना आनंद आ रहा है आज बताइए। हम आधे घंटे से कृष्ण की चोरी की लीला सुन रहे, कितना रस और आनंद आ रहा है कल्पना कीजिए। वहां पर रहने वाले लोगों को कितना आनंद आता होगा, और इतनी कल्पना कीजिए जिसके घर पर चोरी होती होगी उसको कितना आनंद आता होगा। वास्तव में गोपियों को इसमें आनंद आता है, परंतु मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ सकते। परंतु भक्ता माम अभिजानाति, गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, अर्जुन भक्ति से प्रेम से मुझे जाना जाता है, तपस्या से कोई मुझे नहीं जान सकता है। रहु गणित तपसान याति। पंचम स्कंध में जब राजा रहुगण जा रहे थे गंगा सागर, तो जड़ भरत जी ने सबसे पहला उपदेश यह दिया कि हे रहुगण, रहु गणित तपसान न याति, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं। न छंदसा न निर्वपणात गृहात, ये घर छोड़ देने से अपने शरीर को जलाने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं भक्तों की सेवा करने से। बिना महत पाद रजो अभिषेक, प्रेम से प्रेमांज जनित छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम के नेत्र से आंख में प्रेम का अंजन यदि डाला जाए तो हृदय में भगवान रोज दिख सकते हैं, रोज आप बात कर सकते हो लेकिन प्रेम से। संत लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े बड़े संत प्रेम से भगवान का सदैव दर्शन करते हैं। तो इस बात को कोई प्रेमी समझ सकता है, कठोर हृदय वाला नहीं समझ सकता है। तो कृष्ण ने जो यह लीला की भक्तों को आनंद देने के लिए, नहीं तो बताइए भगवान कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर चले गए उस दिन से ब्रजवासियों ने खाना बंद कर दिया। यदि कृष्ण ने परेशानी किया होता लोगों को तो लोग खुश होते। यदि कृष्ण, मान लीजिए ये लोग कह रहे हैं नरक में गए और नरक में गए परेशान किया, यदि परेशानी किया होता तो सब लोग डांस करते, फेस्टिवल मनाते, अरे कृष्ण चले गए। लेकिन कृष्ण जब ब्रज वृंदावन से चले गए तो जब जो गोकुल की स्थिति हुई है भागवत में वर्णन है, उस दिन से गोकुल ब्रजवासियों ने खाना बंद कर दिया। अरे मनुष्य की बात तो दूर रही, प्राणियों ने, गाय इत्यादि पशुओं ने खाना बंद कर दिया। उद्धव जी जब आते हैं, भागवत में वर्णन है, उद्धव जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अपनी खबर देने के लिए भेजते हैं कि आप डरो मत। उद्धव जी जब वृंदावन के चौराहे में खड़े हो और पूछ रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा कहां पर रहते हैं, एड्रेस पता ढूंढ रहे हैं, किसी को पूछे नंद और यशोदा कहां रहते हैं, तो दो तीन ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा का पता ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो यहां पर ये जो नाला नदी बह रही है आप देख रहे हो, इस नाले के किनारे किनारे चलते जाओ, जिस घर से यह नाला निकलता है वह घर नंद और यशोदा का घर है। क्योंकि उद्धव, जिस दिन से कृष्ण ब्रज वृंदावन छोड़कर गए हैं उस दिन से नंद और यशोदा इतना रोए हैं, उनके आंख से आंसू आज तक नहीं सूखा है, और उनके आंख के आंसू से यह नाला, ये साधारण पानी नहीं है, ये नंद और यशोदा का आंसू बह रहा है। इसलिए इसके किनारे किनारे चले जाओ, उनका घर आ जाएगा। उद्धव जी जब नंद और यशोदा के घर पर पहुंचे हैं, नंद और यशोदा ने बहुत उन्हें मनाया और कहा, और हद तो तब हो गई जब यशोदा मैया कृष्ण को गाय और बछड़ों के सामने लेकर जाते हैं, कहते हैं कृष्ण कृष्ण हमारी ओर मत देखो, हम तो बहुत बूढ़े हो गए, कल मर जाएंगे, परंतु तुम्हारे विरह में जब से तुम ब्रज वृंदावन छोड़कर गए हो तब से इस गाय और बछड़े ने खाना बंद कर दिया है, बेचारे मर जाएंगे। तुम्हारा नाम गोपाल है, कम से कम अपने नाम को तो सार्थक करो, इस गाय और बछड़े का पालन तो करो। इस प्रकार से देखिए मैं यह समझाना चाहता हूं कि कृष्ण जो भी लीला करते हैं भक्तों को आनंद मिलता है, आनंद देने के लिए। तो ये चोरी की लीला जो है इसमें वास्तव में भक्तों को रस और आनंद मिलता है, और इसी यही आनंद देने के लिए कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण आए और इस प्रकार से चोरी किए। यशोदा मैया ने सबकी शिकायत सुनी और शिकायत सुनते सुनते मन में यही सोच रहे हैं कि घर में ऐसी माखन की क्या कमी है कि कृष्ण बाहर जाकर मक्खन खाता है। तब यशोदा के माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ, आज तक मेरे घर में मक्खन दासिया बनाती है, इसलिए कृष्ण के लिए मक्खन आज मैं बनाऊंगी। दिवाली के दिन सुबह 3:30 बजे उठकर यशोदा मैया ने क्या सोचा कि कृष्ण के लिए मक्खन मैं बनाऊंगी, क्योंकि कृष्ण भाव के भूखे हैं, कृष्ण को भाव चाहिए, और दासिया जो काम करती है उसमें भाव नहीं होता है। संबंध किसी के साथ संबंध जोड़कर जब कार्य होता है तो उसमें भाव होता है, और बिना संबंध के जो कार्य होता है वो तो डर के मारे या कुछ लालसा के लिए कार्य होता है। इस बात को आप छोटे से दृष्टांत से समझ सकते हो। हम भोजन घर पर भी करते हैं और होटल में भी करते हैं। घर में जैसे हमारी माँ और पत्नी हमें पिरोसती है तो होटल वाले भी पिरोसते हैं। आजकल के होटल वाले आप देखेंगे पंजाबी डिश मंगाओगे तो वही आपको रोटी रखेंगे, वही आपको सब्जी डालेंगे जैसे हमारी माँ और पत्नी देती है। तो होटल वाले भी भोजन देते हैं और घर वाले भी देते हैं, अंतर क्या है? होटल वाला जो आपको भोजन दे रहा है उसमें कोई भाव नहीं है, उसकी एकमात्र इच्छा है कि मैं अच्छी तरह से दूंगा तो अच्छी तरह से मुझे पैसा मिलेगा। दूसरा भाव यह है कि कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना है। दे रहा है भोजन, खिला रहा है, सब कुछ है, लेकिन भाव प्रेम का भाव नहीं है। परंतु वही भोजन घर पे माँ और पत्नी भी देती है, परंतु उसके पीछे भाव प्रेम का होता है कि मेरा बेटा यह खाएगा, मेरे पति इसको खाएंगे। तो यह भाव है, और भाव में बहुत शक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी माँ और पत्नियों के हाथ से बनाया हुआ भोजन अमृत के समान होता है। कभी किसी को बाहर का नहीं खाना चाहिए। बाहर के लोग के बहुत सूक्ष्म प्रभाव है। मान लीजिए रास्ते में जो गाड़ी खड़ी रहती है उससे खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? स्थूल प्रभाव तो बाहर दिख रहा है क्योंकि पानी गंदा होता है, उनके हाथ गंदे होते हैं, पसीना होता है उसमें, ये तो बाहर की बात है। अंदर की सूक्ष्म बात क्या है? सूक्ष्म बात यह है कि जो व्यक्ति जिस भाव से भोजन बनाता है भोजन में वो भाव आ जाता है। तो फेरिया वाला जो भोजन बनाता है उसमें क्या भाव होता है? वो तो काम क्रोध लोभ में जल रहा है। और कोई बालक यदि उसके हाथ का बनाया हुआ खाता है तो निश्चित उसमें काम आना ही है। कुछ माता पिता कहते हैं कि हम हमारे बालक को इतना अच्छा संस्कार देते हैं, घर में टीवी भी नहीं रखते हैं, कुछ नहीं है, फिर भी ये इतना क्यों बिगड़ रहा है? ये इतना इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि वो जो भोजन कर रहा है और भोजन करने का प्रभाव किसी का और का आ रहा है और वो सूक्ष्म असर करता है। बहुत बहुत दृष्टांत है इसके पीछे। हम तो लीला में हैं, एक ही श्लोक में इतना हो गया, अभी तो 18 श्लोक बाकी है। 10 बज गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यशोदा मैया ने सोचा कि ये दासियां मक्खन बनाती हैं परंतु भाव से नहीं बनाती, तो अब मैं मेरे हाथ से कृष्ण के लिए भाव से मक्खन बनाऊंगी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ग्रही जनार्दन, गीता में कहा गया है भगवान भाव, भगवान कार्य नहीं देखते हैं। आप यह छोड़ो, कृष्ण कभी भी कार्य नहीं देखेंगे, कृष्ण कार्य के पीछे का भाव क्या है यह देखेंगे। अब देखिए दुर्योधन ने कितना बड़ा कार्य किया था, 56 भोग बनाए, एक से एक कितनी सुंदर सुंदर मिठाई बनाए। अब दुर्योधन भूमंडल का राजा, 56 भोग माने कितने बड़े बड़े भोग होंगे। दुर्योधन ने कार्य कितना बड़ा किया, लेकिन फिर भी कृष्ण दुर्योधन के घर पर भोजन करने नहीं गए। और वहां पर विदुर जी का क्या कार्य है? दासी के पुत्र है, किसी के नौकर है, और उनकी पत्नी ने कार्य क्या किया? केले के गर्भ को फेंक दिया, छिलके को कृष्ण को दिया। देखा जाए तो विदुर की विदुरानी का कार्य बहुत गर्हित है, दुर्योधन का कार्य बहुत अच्छा है। बेचारे ने इतना मेहनत करके 56 भोग बनाया और विदुर की पत्नी ने केले को फेंक दिया और छिलका दिया कृष्ण को। तो कृष्ण कार्य नहीं देखे, इस कार्य के पीछे भाव क्या है इसको देखे। इसलिए कृष्ण भाव ग्रहण करते हैं। कार्य हम कितना भी करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, 16 माला जप इत्यादि करना चाहिए, करना बंद मत कीजिए, लेकिन पीछे भाव होना चाहिए। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणा क्रियेत भगवती अध्या तत्मन्य अधित उत्तम। प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, नवदा भक्ति श्रेष्ठ है परंतु भाव से होनी चाहिए। तो भाव होना चाहिए। मैंने शनिवार को दृष्टांत दिया था, भगवान भाव के भूखे हैं। एक बार कर्माबाई का नाम आपने सुना होगा, बूढ़ी औरत थी, घर पे कोई नहीं था, अकेली, और जगन्नाथ जी के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, रोज सुबह उठकर जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। और कर्माबाई खिचड़ी कैसे बनाती थी, शास्त्र में वर्णन है। रोज सुबह उठकर दातुन करती थी और जिस दातुन से अपने मुख में जो दातुन करती थी वही दातुन पीछे के भाग से खिचड़ी को हिलाती थी, वही दातुन से खिचड़ी को। ये कार्य देखने में कितना गरीब, आज का व्यक्ति भी वो खिचड़ी नहीं खाएगा बताइए। परंतु जगन्नाथ जी कर्माबाई की खिचड़ी को प्रेम से खाते थे। कोई कितना भी धन चढ़ा दे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु कर्माबाई की खिचड़ी को स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था, भगवान भाव देखते हैं। यशोदा जी ने सोचा कि ये दासिया जो मक्खन बनाती है उसमें भाव नहीं है, ये तो महीने में इतना पैसा मिलने वाला है इसलिए एक घंटा काम करके चली जाएगी, परंतु आज मैं स्वयं मैं अपने हाथ से कृष्ण के लिए मक्खन बनाऊंगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निर्म मंथम स्वयं दधी। पहला श्लोक समाप्त हुआ। अब दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते, अब मैं थोड़ा भगाता हूं, नहीं तो इसमें ही कितना समय निकल गया है। तो यशोदा मैया मक्खन बनाने के लिए बैठी हैं। कल्पना कीजिए सुबह 3:30-4 बजे का समय है ब्रह्म मुहूर्त का। अब भगवान के लिए जो भी कार्य करना है ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है। हाँ सत्य बात है। मैं एक बार मेरे प्रवचन में कह रहा था, आज भी व्यक्ति भगवान से बात कर सकता है, आज भी कोई चाहे तो, और उसका नंबर भी भगवान ने दिया है, भगवान आकर देकर गए हैं। संसार में मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, MTNL 8 डिजिट का होता है, भगवान का नंबर क्योंकि दूर है इसलिए बड़ा डिजिट का होगा, इसलिए 16 डिजिट का नंबर है। क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये नंबर डायल करोगे तुरंत कृष्ण बात करेंगे, परंतु एक शर्त है, ये लाइन सुबह ही फ्री होती है, क्योंकि जैसे ही दोपहर होता है तो इतना एंगेज हो जाता है फोन कि भगवान से कनेक्शन नहीं होता है, और दोपहर शाम को तो नो चांस। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल खाली होता है लाइन, क्योंकि बहुत कम होते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले। काय सब लोग सूर्यवंशी है, सूर्य देव आने के बाद खड़े रहने के बाद थोड़ा धूप देंगे तब जाकर उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की लाइन क्लियर होती है, ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य करते हैं डायरेक्ट कनेक्शन होता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक भगवान में मन लगता है। इसलिए हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब देखो ब्रज वृंदावन में रहने वाली गोपियां हेमंते प्रथमे मासी, भागवत में वर्णन है कि हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु किसे कहते पता है? 12 महीने में सबसे ठंडी की ऋतु, सबसे ठंडी की, दिसंबर की जो ठंडी होती है एकदम, और वह भी वृंदावन की ठंडी। आप अभी चलोगे, हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन, अभी तो बहुत कम ठंडी होती है। हम पहले जाते थे तो जो सिर में डालने का तेल होता है वह भी जम जाता था, सब क्रीम व्रीम सब कुछ बर्फ ही बन जाता था। इतनी ठंडी में हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम दिन से ही गोपिया सुबह 3:30 बजे उठकर 4 बजे यमुना में स्नान करती थी। कितना ठंडा पानी, और यह करने के बाद उसे कृष्ण मिले, बताइए हमारे घर पे सोने रहने से कृष्ण मिल जाएंगे? अरे कृष्ण को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो सार्थक करके दिखाया है अपनी अंत्य लीला में। देखिए गंभीरा में, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। अरे कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, साधारण व्यक्ति को भी इस संसार के प्राइम मिनिस्टर को मिलना है तो बोलिए बोलिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी पहचान लगानी होगी, कितना फोन करना होगा, उसके लिए कितना भोजन बनाना होगा, तब जाकर वे आएंगे नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं है। एक प्राय साधारण प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो जो प्राइम मिनिस्टरों के भी प्राइम मिनिस्टर भगवान कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वास्तव में ये बहुत बड़ा कार्य है, ये सत्वगुणी व्यक्ति का यह निशानी है, ये स्वभाव है कि वह सुबह जल्दी उठ जाता है। यदि सुबह जल्दी उठ नहीं पाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप प्रगति नहीं कर पाओगे। यदि भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक हो, सुबह जल्दी उठना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। बॉम्बे जैसे शहर में बहुत मुश्किल होता है इस बात के लिए, क्योंकि बॉम्बे में लोग सोते ही हैं 9 बजे 10 11 12 बजे। गांव की स्थिति बहुत अच्छी है, हम तो धन्य मानते हैं गांव में रहने वाला। और बस चले तो हम भी गांव में चले जाए, 7 8 बजे सो जाते हैं। अभी तो सब लोग खर्राटा लेते होंगे हमारे अपने अपने गाँव में सब लोग, और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। भले बेचारे भक्ति नहीं करते हैं, इसको उनको नहीं जानते हैं, परंतु कम से कम वो मनुष्य है। ये बंबई में रहने वाले सब लोग पशु है, जानवर है सब लोग। कब सोना, कब उठना, कब खाना, कोई भरोसा नहीं। मैं कथा में कह रहा था ना, सब लोग अपने आप को मानते हैं बंबई में रह रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। अरे क्या प्रगति कर रहे हैं? गांव के लोग देखो घर पर खाते हैं, घर पर खाते हैं और शौच करने के लिए खेत में बाहर जाते हैं। और बंबई के लोग बाहर होटल में खाते हैं और लेटरिन घर पे आकर करते हैं, और इसे प्रगति मानते हैं। इसे प्रगति कहते हैं, कहते हैं हम महान, हमारा भारत महान। क्या महान? जो जिसे जो भोजन करना है, जो चीज भगवान को भोग लगानी है, वह सब्जी रास्ते में बिकेगी, जहां पर धूल धुआं सब कुछ उड़ रहा है, उड़ रहा है सब्जी। जिसको भोजन करना है, भगवान को भोग लगाना है, यह सब सब्जी रास्ते में मिलती है, और जो पांव में जूता पहनना है वह ऐसी शोरूम में मिलता है। कहते हैं प्रगति कर रहे हैं। तो ये सब ये दुनिया की अधोगति है। वास्तव में जो लोग इस्कॉन संस्था में है, प्रभुपाद जी के सिद्धांत को स्वीकार किए हैं, भागवत और गीता को जाने हैं, वही इससे बच सकते हैं और वही इस आने वाले पतन को रोक सकते हैं, नहीं तो कोई रोक नहीं सकता। खैर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैया यशोदा बहुत बड़े मटके में, आप देखते हो गांव में जब छाछ बनानी होती है तो मशीन नहीं होता खर करके 5 मिनट हो गया। गांव में एक लकड़ी का पिलर होता है, उस पिलर के नीचे बहुत बड़ा मटका होता है, मटके में मथनी होती है, उस मथनी को रस्सी से उस पिलर के साथ बांधा जाता है, और मथनी में रस्सी को 2-3 आटी मार के उसको घर घर घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से यशोदा मैया अपने शरीर से अपने हाथों से दही को मथने के लिए बैठी, बहुत सारा दही था उसमें। अच्छा दही किसका था ये भी जीव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण के लिए जो मक्खन बना रही थी वो बिल्कुल विशेष था। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और उसमें 100 गाय स्पेशल गाय थी, और 100 गायों का जो दूध था वे दूध 10 गाय को पिलाया जाता था, और वे 10 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाता था, उस गाय का नाम था पद्मगंधा गाय। और वो पद्मगंधा गाय को जो घास खिलाया जाता था वो घास भी विशेष अद्भुत अलग था, और उस घास में बहुत सुगंधित घास पद्मगंधा गाय को खिलाया जाता था। और ये 9 लाख गायों में से ये एक पद्मगंधा गाय जो दूध देती थी, उस दूध में पद्म की कमल की सुगंध आती थी। हमारी तरह बाहर से एसेंस नहीं डालना पड़ता था, एसेंस डालो या केसर डालो, स्वाभाविक गाय से ही यह दूध सुगंधित स्वादिष्ट दूध निकलता था। और उस दूध को जमा कर दही बनाकर उस दूध को मथ रही थी, दही को मथ रही थी और मक्खन बना रही थी। तो बैठी और प्रारंभ हुआ और दही को मथ रही है। कैसे मथ रही है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यशोदा मैया जब अपने यह दही को मथ रही थी तो मत्ते मत्ते यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च, मैया यशोदा गा रही थी, गाते हुए अपने घर का काम कर रही थी। और क्या गा रही थी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यानी यानी ही गीतानी, अब तक कृष्ण ने जो जो लीला की है वह सभी लीलाओं को छंद में बना बना कर गा रही थी। वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि स्त्रियों का यह स्वभाव ही होता है। अब देखो स्त्रियों का यह स्पेशल स्वभाव होता है, इसमें मास्टरी होती है, वे किसी भी बात को छंद बनाकर गा सकती है। प्राय गुनगुनाती रहती है भोजन करते समय, कुछ काम करते समय, और उसे रोना भी हो तो गाते गाते भी रो सकती है। स्त्रियों में यह अद्भुत गुण है। बेचारे पुरुष लोग रोना हो तो कोने में जाकर रो लेंगे, परंतु स्त्रियां जब रोती है तो गा गा कर रोती है। हमें तो सीखना पड़ेगा ऐसा रोने के लिए, परंतु ये स्वाभाविक स्त्रियों में यह गुण है। तो स्त्रियां इस प्रकार से गा सकती है। यशोदा मैया कृष्ण की जो जो लीला थी वह लीलाओं को गा रही थी और कृष्ण के नाम को, कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, ये नामों को बहुत सुंदर तरीके से गा रही थी। और क्षोमम वास पृथुकटी तटे विभ्रति सूत्र नब्धम, मैं श्लोक लूंगा तो बहुत देर लगेगा एक एक शब्द के, पर आप ऐसे ही सुनिए। तो यशोदा मैया जब ये मत रही थी तो बहुत परिश्रम हो रहा था, क्योंकि जीवन में पहली बार ऐसा कार्य कर रही थी और बहुत बड़ा मटका था, परिश्रम हो रहा था, पसीना निकल रहा था, परंतु वो जो ध्वनि थी बहुत सुंदर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय था और यशोदा मैया गा रही थी। जब यशोदा मैया गा रही थी तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक होता है। जैसे ही यशोदा मैया ने गाना प्रारंभ किया तो वो जो मथनी थी, आचार्य गण कहते हैं कि वो मथनी मृदंग का काम करने लगी घर घर इत्यादि। और यशोदा मैया के हाथ में जो चूड़िया थी, वो चूड़िया भी बजती है ऐसे ऐसे करते हैं तो चूड़िया करताल का काम करने लगी। चूड़िया करताल का काम करने लगी और मथनी मृदंग का काम करने लगी और वातावरण बिल्कुल कृष्णमय बन गया। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सुंदर वातावरण, दही को मथा जा रहा है कृष्ण के, और यह कार्य भी कृष्ण के लिए है। तो इस प्रकार से जब हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा मैया जब बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि उस दिन दिवाली का दिन था इसलिए यशोदा मैया बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर बैठे थी, हमारी तरह नाइटी पहनकर, नाइट सूट पहनकर नहीं बैठी थी। तो बंबई का आज का ड्रेस है बहुत सुंदर, यशोदा मैया ने क्या ड्रेस पहना है वह भी लिखा हुआ है, लहंगा पहना था, घाघरा पहना था, बहुत सुंदर यशोदा मैया का वस्त्र था। और वस्त्र के साथ साथ बहुत श्रृंगार भी किए थे, सभी स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए, परंतु वह श्रृंगार ध्यान रहे संसार के लोगों के लिए नहीं, कृष्ण के लिए या ज्यादा से ज्यादा अपने पति के लिए होने चाहिए। तो यशोदा मैया ने, दिवाली का दिन था इसलिए बहुत सुंदर वस्त्र था, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, और श्रृंगार में भी ब्रज में तो क्या श्रृंगार है, बाल में बहुत सुंदर बेणी डाली गई थी गजरा, और बालों में कैसे भी करके फूल लगाया गया था यशोदा मैया ने। तो इस प्रकार से यह मथ रही थी। तो मथते मथते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा मैया के सिर पर जो फूल थे वो फूल गिरने लगे, क्योंकि इतना परिश्रम इतना कष्ट हो रहा था। तो आचार्य गण कहते हैं आप देखो मोहित मत हो जाना। आचार्य गण अपनी टीका में लिखते हैं कि पता है ये फूल क्यों गिर रहे हैं, कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत के फूल भी आध्यात्मिक होते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, आध्यात्मिक जगत में सब चिंतामणि चिन्मय होता है, फूल भी सोचते हैं, पेड़ भी बात करते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, सब चिन्मय होता है। तो यशोदा मैया के बाल में रहने वाले फूलों ने सोचा कि यह देवी यह भक्ता जो कार्य कर रही है वह कृष्ण के लिए कार्य कर रही है, और कृष्ण के लिए कार्य करते करते कृष्ण का नाम गा रही हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं। अरे ऐसे भक्तों के सिर पर नहीं, ऐसे भक्तों के तो चरणों में बैठना चाहिए। इसलिए एक एक करके सभी फूल नीचे गिर गए, सभी फूल नीचे आने लगे, बेणी गजरा सब कुछ नीचे गिर गया। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्ह होता है और ये भक्तों का स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से यशोदा मैया दही को मथ रही है। अब कथा को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इसे बंद ही कर दीजिए। उतने में दूसरे कमरे में कृष्ण सो रहे थे, यशोदा मैया कृष्ण को सुला कर आई थी। तो कृष्ण अचानक जग गए और जगकर देखा कि मैया नहीं है, इसलिए दौड़ते हुए बाहर के रूम में आए और वहां पर यशोदा मैया मथ रही थी। कृष्ण दौड़ते हुए आए और डायरेक्ट कृष्ण ने जो यशोदा मैया जो दही को मथ रही थी उस मथनी के ऊपर अपना हाथ रख दिया। तो यशोदा मैया की वो मथनी जो घर घर हो रही थी वो बंद हो गया, जैसी बंद कर दिया। तो आचार्यगण अपने टीकाओं में लिखते हैं कि कृष्ण ने वो मथनी क्यों पकड़ लिया, यशोदा मैया को वो कार्य करना क्यों बंद करा दिया। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा मैया को मानो कहा कि मैया इस संसार में सब लोग मुझे प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, संसार में जो लोग मेहनत करते हैं केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, और मैं तुम्हें प्राप्त हो गया हूं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं और तुम ये कार्य कर रहे हो, ये सब कार्य करना छोड़ो, कर्म करना बंद करो, फल के ऊपर ध्यान दो, कर्म का फल तुम्हारे सामने खड़ा है मैया। अब क्या करने की आवश्यकता है, कृष्ण ने दिखा दिया। और तुरंत कृष्ण को माता का दूध पीना था, तो कृष्ण माता के घुटनों के ऊपर पांव रखे और तुरंत आकर गोद में सो गए और कृष्ण अपनी मैया का दूध पीने लगे। और जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक होता है, तो आध्यात्मिक जगत में दूध भी आध्यात्मिक होता है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैया यशोदा बाहर प्रांगण में यह दही को मथ रही थी, उसी वक्त वो जो पद्म गंधा नाम के गाय का दूध, कुछ दूध कृष्ण को पीने के लिए रसोई घर में उबल रहा था, गर्म हो रहा था। और पहले के जमाने में कोई गैस और स्टोव नहीं था, पहले तो चूल्हे में लकड़ी डालकर जलाया करते, तो वो बहुत धीरे धीरे जलता है, इसलिए यशोदा मैया ने उसे रख दिया था। तो दूध उस पात्र में उबल रहा था, गर्म हो रहा था। यहां पर जैसे ही कृष्ण यशोदा मैया के स्तनों का दूध पीने लगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का दूध भी आध्यात्मिक चिन्ह में होता है, सोचता है, इसलिए वह जो उबल रहा था उस दूध ने सोचा कि अब कृष्ण यशोदा मैया के हृदय का दूध पी रहे हैं, कृष्ण यशोदा मैया के हृदय का दूध पी रहे हैं, अब मेरा क्या काम है इस संसार में। देखिए दूध भी सोच रहा है कि जो नहीं कृष्ण के काम का वो इस संसार में कुछ किसी नाम का नहीं, कोई काम नहीं है उसका। तो उस दूध ने सोचा कि अब कृष्ण केवल अपने माता का दूध पी रहे, अब मुझे पिएंगे ही नहीं। यह आशंका के कारण दूध ने सोचा कि अब यह जीवन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि भगवान से विमुख होकर यह जीवन को जला देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं जरूर जाओ उस जीवन जान की नाथ जिए जग में तुम रो गुण भय, भगवान श्री रामचंद्र से विमुख होकर तो इस जीवन को इस शरीर को जला देना चाहिए। ये शरीर यदि भगवान के काम में नहीं आता है तो ये शरीर क्या काम का है, कुछ काम का नहीं है। दूध ने यही सोचा कि अब कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे, माँ का दूध पीने लगे हैं, इसलिए मैं क्या काम का हूँ। तुरंत दूध उबलने लगा और अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया और उस पात्र से उस तपेली से वो दूध बाहर आ गया। आप जानते हो माताओं को अनुभव होगा, जैसे ही दूध उबल बाहर आ जाता है तो छन्न करके आवाज आता है। तो यशोदा मैया बैठी थी कृष्ण को दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे ही वहां आवाज आया रसोई घर में, तुरंत यशोदा मैया को पता चला कि अरे बाप रे बाप दूध गर्म हो रहा है। तो वह दूध पीते कृष्ण को, अब यशोदा मैया ने यह भी सोच लिया कि स्तन का दूध तो कहीं बाहर जाने वाला है नहीं, परंतु रसोई घर में नहीं जाऊंगी तो वह दूध बिल्कुल सब उबल कर बाहर निकल जाएगा। तो कृष्ण को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखा और दौड़ कर रसोई घर में चली गई और उस दूध को बचा लिया। जैसे ही यशोदा मैया कृष्ण को छोड़कर गई, यहां कृष्ण तो लाल पीले हो गए। अरे बताओ, ध्यानी लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ध्यान करते हैं फिर भी मेरे चरणों का ध्यान नहीं कर सकते हैं, योगी लोग यत्न करते रह जाते हैं फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और मैं कृष्ण यशोदा के आंगन में बैठा हूँ, उसका दूध पी रहा हूँ, तो उस वो मुझे छोड़कर चली गई। कुछ वैल्यू ही नहीं है हमारी। ये सत्य बात है, आसानी से जो जिसको मिल जाता है उसको वैल्यू नहीं रहती है। दिखा दूंगा मैं मेरी माँ को आज कि मैं भी कुछ हूँ। कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर वहां पर एक छोटा सा पत्थर था, वो पत्थर लेकर जिस मटके में यशोदा मैया दही को मत रही थी, इतना बड़ा मटका, उस बड़े मटके को पत्थर से फोड़ डाला और सारा दही मक्खन छाछ सब कुछ बाहर निकल गया। सब बाहर, पूरा कमरा दही और मक्खन से भर गया। यशोदा मैया आई, आकर देखा तो कृष्ण देखा कि ये सब लोग सब बाहर निकल रहा है, तो जाकर कहीं छिप गए। यशोदा मैया ने आकर देखा तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा मैया सबसे पहले हंसी, स्मित, एक हंसी आई। हंसी क्यों आई? आचार्य गण कहते हैं कि यशोदा मैया ने देखा, नहीं नहीं, ये कृष्ण भले छोटा है लेकिन बुद्धिमान तो है, मेरे बालक में बुद्धि तो है। माता जब छोटा सा बालक कुछ ऐसा कार्य करता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, नहीं इसमें बुद्धि है। तो यशोदा मैया ने क्या देखा कि कृष्ण ने जो मटका फोड़ा था ऊपर से नहीं, बिल्कुल नीचे से फोड़ा, ताकि उस मटकी में एक बूंद भी न बचे, सब कुछ निकल जाए। यशोदा मैया ने देखा इसमें बुद्धि बहुत है। परंतु दूसरे क्षण में यशोदा को बहुत क्रोध आ गया। वो जो मैंने प्रारंभ करते हुए कहा ना, जितनी गोपियां आई थी शिकायत करने के लिए, यशोदा मैया ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन यशोदा मैया अब तो कही कि अब तो कंफर्म हो गया कि यह कृष्ण दूसरों के घर में जाकर उत्पात मचाता ही होगा। अब आज मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मैया ने हाथ में छड़ी ली और छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण पर्दे के पीछे छिपे थे और जैसे ही कृष्ण ने यशोदा मैया को देखा, तुरंत वहां से जंप लगाकर भागे। आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया अपनी माँ को दौड़ा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं यशोदा मैया का शरीर बहुत मोटा है, क्योंकि खाते हमारी तरह थोड़ी ना है, खाते पीते घर की पत्नी है, कृष्ण की माँ है, और किसी भी बात की चिंता नहीं है, केवल कृष्ण की चिंता के अलावा और कोई चिंता नहीं है। कृष्ण के लिए चिंता हो वो चिंता नहीं है, वो तो भक्ति है, लेकिन हमें तो कृष्ण के अलावा संसार की सब चिंता है। इसे देखे ना, सब लोग पतले पतले हैं, सब लोग कुछ मोटे होना चाहिए, ये भक्तों का लक्षण है। भक्ति ने ठाकुर को देखी। कुछ लोग मुझे बहुत कहते हैं, प्रभु जी आप बहुत मोटे हो रहे हैं, आपका पेट बहुत बढ़ रहा है। मेरा देखो एवं परंपरा प्राप्त, ये गुरु शिष्य परंपरा में है। भक्तिनाथ ठाकुर को देखी, तुरंत दिखाता हूँ मैं फोटो में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा मैया का शरीर बहुत मोटा था, तो यशोदा मैया को दौड़ने में बहुत कष्ट होता था, और कृष्ण तो छोटे छोटे पांव थे, छोटे छोटे कदम से दौड़ रहे थे, तो कभी ये कमरे में, तो कभी वो कमरे में, कभी गोकुल की गलियों में, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा, बहुत भागे, कितना भगाए, भागे भागे यशोदा को पसीना छूटने लगा और कृष्ण तो भागते ही रहे, और भागने में ज्यादा अंतर नहीं, एक हाथ का अंतर केवल बचता था। तो बहुत भगाए, कृष्ण हाथ में नहीं आ रहे थे, और कृष्ण कैसे भाग रहे थे यह भी वर्णन है, पीछे देख देख कर भाग रहे थे, ये पकड़ा, ये पकड़ में आ गए। आचार्य गण लिखते हैं कि जैसे आज के भक्त भगवान को पकड़ना चाहते हैं, वहां यशोदा मैया दौड़ते हुए पकड़ती हैं, और आज के भक्त हरिनाम जप के या कथा सुन के भगवान को पकड़ना, ये भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, एक भगवान को पकड़ने के बराबर ही है। तो वहां यशोदा कृष्ण को पकड़ रही है, और यहाँ हम भी कृष्ण को रोज सुबह उठकर सोलामाला जप, ये सब पकड़ने का प्रयास है, लेकिन हाथ में आए हैं किसी के हाथ में तो भाई कहिएगा, हम प्रणाम करेंगे उसे, नहीं आ रहे हैं हाथ में। तो जैसे हमारे हाथ में नहीं आ रहे, यशोदा मैया के भी हाथ में नहीं आए, तो यशोदा मैया के हाथ में कृष्ण नहीं आए तो यशोदा मैया बैठ गई, ऐसा नहीं है। यशोदा मैया एक क्षण के लिए भी खड़ी नहीं रही, बस प्रयास शुरू रहा। आचार्य गण कहते हैं कि भगवान प्रयास देखते हैं। कृष्ण देखा कि माँ प्रयास कर रही है मुझे पकड़ने का, कृष्ण प्रयास को देखकर सोचा कि अब इतना बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है। तुरंत कृष्ण खड़े रह गए और मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। देखिए इससे बहुत बड़ा सिद्धांत यह है कि भक्तों हम जीवन भर भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं परंतु हाथ में नहीं आते। यदि भगवान हाथ में नहीं आए हैं तो किसी को नर्वस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आदतें नहीं छूटती है, हमारा स्वभाव नहीं छूट रहा है। टेंशन मत लीजिए, वो जो छुड़ाना है वो कृष्ण के हाथ में है। हमारा कार्य है प्रयास करना। जैसे यशोदा मैया ने प्रयास जारी रखा वैसे हमें प्रयास अपना प्रयास जारी रखना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे जीवन में दुख आए दर्द आए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अई नंद तनुज किंकर। हे नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, हम आपके किंकर हैं। चाहे आप हमें डांटो मारो सताओ कुछ भी करो परंतु हम तो भाई केवल आपसे प्रेम करेंगे। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में दुख की स्थिति आ जाती है तो भक्ति छोड़ देते हैं, मंदिर में जाना छोड़ देते हैं, माला जपना छोड़ देते हैं। तो भाई ये परीक्षा है भगवान की। ऐसी स्थिति में भी यदि हम भगवान को पकड़ कर रखेंगे तो निश्चित भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रयास को देखते हैं। यशोदा जी के प्रयास को देखकर भगवान पकड़ में आ गए और यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण को डांटने लगी और छड़ी दिखा दिखा कर, मारना नहीं था लेकिन दिखा दिखा कर करने लगी कि बोल बता चोरी करेगा। कृष्ण ने कहा मैया नहीं करूंगा। बहुत भोली सूरत बनाकर कृष्ण कहने लगे तू नाटक करता है, ड्रामेबाज है तू, अभी इतना भोला बनता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तू भी दंड का पात्र है और ये उखल भी तुझे साथ में चोरी करने में मदद करता है, तुम और उखल दोनों को बांध रही हो। कृष्ण को एक कमरे में लेकर गई मैया और उस कमरे में कृष्ण को बाजू में उखल पड़ा था, उखल के साथ लगाया और रस्सी के साथ बांधने लगे। जैसे ही मैया यशोदा रस्सी के साथ कृष्ण को बांधने लगी तो देखा तो अब गांठ मारने के लिए कुछ थोड़ी रस्सी तो चाहिए, तो जैसे ही कृष्ण को इसे रस्सी बांधने जाती तो रस्सी छोटी पड़ती, गांठ कैसे लगाया। तो यशोदा जी ने दासियों को बुलाया यहां पर आओ हमारे घर में जो रस्सी है लेकर आओ। तो उस रस्सी के साथ जो नई रस्सी लाई गई वह भी गांठ मार के ज्वाइंट की गई, फिर ऐसे घुमाकर रस्सी को मारने गई तो भी छोटी, दो उंगली रस्सी छोटी गिरती थी, द्वई उंगली। तो प्रश्न होता है कि इतनी सारी रस्सी घर से लाई गई तो वह गई कहां। तो कृष्ण की एक शक्ति थी, कृष्ण के पीछे वह सारी रस्सी हट जाती थी। जब घर की सारी रस्सी समाप्त हो गई तो यशोदा मैया ने कहा गोकुल में सभी लोगों के घर पर जाओ और जितनी रस्सी है सभी दुकानों में जाओ, सभी रस्सी यहां पर लेकर। गोपियां कहने लगी छोड़ो भी मैया, अब कहते विष्णु की इच्छा नहीं है कि ये कृष्ण को बांधा जाए, भगवान ही नहीं चाहते हैं कि ये बांधे जाए, क्यों बांधने का प्रयास कर रही है। यशोदा ने कहा तुम लोगों ने ही इसे बिगाड़ा है, जाओ मैं कहती हूँ वो तो रस्सी लेकर आओ। सभी बेचारी गोपियां गई और गांव भर की रस्सी लेकर आई, सारी रस्सी को बांधा फिर भी गांठ नहीं लगी। यशोदा मैया जितना थकावट उसको पकड़ने में हुई थी उससे ज्यादा थकावट कृष्ण को बांधने में हो रही थी। बताइए कृष्ण को भी, कृष्ण की जो शक्तियां थी वो कृष्ण को बांधने नहीं दे रही थी। कृष्ण की शक्तियां यही कह रही थी कि ये कृष्ण को इस संसार में कोई बांध नहीं सका है, तो यशोदा कैसे बांधे, हम नहीं बांधने देंगे। और ये कृष्ण की जो शक्तियां थी वही ये रस्सी को कम कर रही थी। परंतु कृष्ण में एक शक्ति है जिसका नाम है कृपा शक्ति, और कृष्ण की कृपा शक्ति जब हो जाती है तब वो किसी को भी कृपा कर देती है। कृष्ण की कृपा शक्ति प्रदान हुई, यशोदा मैया के ऊपर दया आई और यशोदा मैया अंत में कृष्ण को उस उखल के साथ बांध दिया गया। कृष्ण उखल के साथ बंधे हैं और बंधे हुए बेचारे भोली सूरत करके बैठे हैं। और यशोदा मैया सभी गोपियां कहने लगी बेचारा रोने लगेगा छोड़ो अभी से। सब यशोदा ने सभी गोपियों को कहा चलो यहां से बाहर निकलो इस कमरे से, खबरदार इस कमरे में कोई मत आना, यही कृष्ण के लिए सजा है, भूखा प्यासा यहीं पर इसको खड़ा रखना है, ये उखल और कृष्ण दोनों अपराधी हैं, दोनों को बांधकर खड़ा रख दिया, सबको बाहर निकाला। जीव गोस्वामी और रुशना चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस दिन बलदेव जी कहां थे। तो जीव विश्व टीका में लिखा हुआ है कि उस वक्त रोहिणी जी, यदि रोहिणी जी होती तो बांधने नहीं देती, प्रथम भगवान की ये सब इच्छा है। उस दिन रोहिणी जी बलदेव जी को लेकर उपनंद के वहां चली गई थी भोजन के लिए, और उपनंद के वहां बलदेव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो किसी ने बलदेव जी को जाकर कह दिया कि न्यूज कैसा दिया, ऐसे दिया कि आपके छोटे भाई कृष्ण को किसी ने बांधा है। किसने बांधा है, कैसे बांधा है, क्यों बांधा है, यह कुछ नहीं बताया, केवल इतना बताया कि आपके छोटे भाई कृष्ण को किसने बांधा है। तो बलदेव जी तो क्रोधित हो गए, अनंत शेष के अवतार है, साक्षात क्रोध, मूर्तिमान क्रोध, वे तो कृष्ण ने कृष्ण को बांधा है, कौन है, लगता है उसकी मृत्यु से पुकार रही है, आज वह इस दुनिया से उठ जाएगा। ऐसा करते हुए बलदेव जी अपनी पूरी सेना को लेकर, जैसे भाई लोग आज के आते हैं, चार पांच जीप लेकर आ जाते हैं कहीं पर, कौन है, रास्ते में बोल बोल कर मार डालूंगा उसे, आज तो वो मर जाएगा मेरे हाथों, आज उसकी मां बिना पुत्र वाली हो जाएगी, यदि विवाह हुआ है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसके पुत्र अनाथ हो जाएंगे, किसने मेरे भाई को, कृष्ण को किसने बांधा है, किसने बांधा है। वैसे करते करते आए घर पे, आकर देखा तो यशोदा मैया ने ही बांधा है, सारी हवा निकल गई बलदेव जी की। अच्छा मैया ने बांधा है तो कुछ नहीं हो सकता है भाई, लेकिन फिर भी बलदेव जी आखिर बड़े भाई हैं, इसलिए कृष्ण को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। बलदेव जी गए यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया के पास जाकर कहने लगे, यशोदा मैया आप जानती हो आपने किसको बांधा है, छोटे से दाऊजी भी छोटे ही हैं, यशोदा मैया बड़ी हैं, ऐसे ऊपर देख, आपको पता है आपने किसी किसको बांधा है। यशोदा मैया ने कहा, नहीं नहीं जी बताओ मैं किसको बांधा है मैंने। यशोदा बलदेव जी कहते हैं, आपने साक्षात विष्णु को बांधा है, तुम जिस विष्णु की पूजा करती हो ये विष्णु है, ये नरसिंह, वामन, वराह, परशुराम, ये जितने भी अवतार हुए ये इसने लिए हैं, ये अवतार लेने वाला तुम्हारे घर पर जन्म लिया है, और अवतार लेने वाले विष्णु को आपने बांधा है। यशोदा मैंने कहा, अच्छा वो विष्णु है जिसको मैंने बांधा है, वो रो रहा है और बेचारा वहां से छूट नहीं सकता है, वो विष्णु है। अच्छा ठीक है, तो तुम कौन हो। तो बलदेव जी कहने, मैं अनंत शेष हूं, अनंत फेण, जिसके ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड खड़े हैं। तब तक तो यशोदा मैया ने छड़ी बाहर निकाली और कहा कि सारे अवतार मेरे ही घर होने थे, वहां विष्णु और अनंत शेष, भाग यहां पर नहीं तो तुझे भी बांध दूंगी। दाऊ जी को भी भगा दिया वहां से, क्या करे, मैया है और मैया है, प्रेम करने वाली मैया है, प्रेम के हाथों में कौन छुड़ा सकता है। उस वक्त बलदेव जी ने कहा कि मैया, यशोदा मैया कृष्ण की भक्त बांधी है, इसलिए मैं छुड़ा नहीं सकता, नहीं तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति होता तो आज वो मौत के घाट उतर गया होता, लेकिन भक्ति से बांधा है इसलिए मैं कुछ। तो दाऊ जी को हुआ, बलदेव जी को लगा कि चलो कृष्ण के पास जाकर देखे। कृष्ण जिस कमरे में थे उस कमरे में बलदेव जी धीरे धीरे करके आए, आए तो आकर आकर अपने बड़े भाई बलदेव जी को देखकर कृष्ण भैया करके रोने लगे। बलदेव जी डांटने लगे कृष्ण, मैंने कहा था चोरी मत करना, मैंने कहा था चोरी मत करना, फिर भी क्या सजा भोगत। कृष्ण कहे, भैया आप भी कुछ नहीं करोगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, मैया ने बांधा है। इतना कह के बलदेव जी भी रोने लगे, दोनों भगवान, दोनों इस ब्रह्मांड के स्वामी, दोनों रोने लगे। इस प्रकार से बलदेव जी वहां से चले गए। कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं, वह रज्जू से के साथ बंधे हैं, और बंधे हुए कृष्ण रो रहे हैं। वास्तव में यह मूरत वेद व्यास जी जब भागवत लिख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी लगी, और सत्यव्रत मुनि ने इस दृश्य को बहुत सुंदर गाया है। यह दृश्य हमारे वैष्णव भक्तों के लिए, गौड़ीय भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर दृश्य है। भक्त लोग इसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दृश्य में भक्त की विजय है। जिस भगवान को कोई नहीं बांध सका, एक से एक प्रतापी राजा महाराजा आए, रावण बांधने गया कुंभकर्ण, ये कंस, हिरणाक्ष, हिरणाकश्यपु भगवान के छू तक नहीं सके, परंतु यशोदा जी ने भगवान को बांध दिया। भक्त की विजय रूपी यह दृश्य है, एक वात्सल्य भाव का यह दृश्य है, बहुत सुंदर यह दृश्य है। और वास्तव में इसी प्रकार भाव से यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, देखिए इसमें हमें यह लग सकता है कि यशोदा ने कृष्ण को डांटा है, मारा है। वास्तव में यशोदा जी ने जो कार्य किया है वही संसार का सबसे बड़ा और परम कार्य है। भगवान को प्रसन्न करने वाला यह कार्य है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो इस बात को कहते हैं कि कोई मुझे ऐश्वर्य भाव से पूछता है तो मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूं। इस संसार में प्राय लोग यमराज से डर करके नरक में जाना पड़ेगा, इस डर के कारण भगवान का भजन करते हैं, परंतु उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कोई मुझे बेटा बनाकर मेरी भक्ति करता है। कृष्ण को यदि अपना पुत्र माना जाए और पुत्र मानकर उसकी सेवा की जाए तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों आज इस साल का अंतिम दिन है, इसलिए आज मैं सभी शास्त्रों के सार की बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति इसको पकड़ सकता है इसे पकड़ लीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। भगवान का भजन भाव से, और भाव क्या है? शांत दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और साक्ष्य। कृष्ण को पुत्र बनाकर, अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा की जाए, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण को पुत्र मानकर उसे डांटा जाए, उसे गाली भी दी जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं। कृष्ण को आप देखिए, आज भी हमारे ब्रज वृंदावन में जो वात्सल्य भाव में है, जो कृष्ण के साखी भाव में, कृष्ण को गाली देते हैं और कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं। मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, वृंदावन में रसिक बिहारी जी करके भगवान का विग्रह है, आज भी है। हम वृंदावन में जाएंगे तो दर्शन करेंगे। रसिक बिहारी जी के पुजारी एक बार कृष्ण को पगड़ी बांध रहे थे, पता ना कृष्ण का ये स्वाभाविक श्रृंगार है पगड़ी बांधना। कृष्ण को पगड़ी बांध रहे थे तो पगड़ी पूरा बांध देते थे तो कृष्ण थोड़ा सा सिर हिलाते तो पगड़ी गिर जाती थी, तो लेकर फिर से बेचारे बांधने लगे। दूसरी बार बांधी तो फिर से हिलाए गिरा दी, तीसरी बार बांधे तीसरी बार गिरा दी, ऐसे 12 बार कृष्ण ने पगड़ी गिरा दी। ये सत्य घटना, और 12वीं बार जब पगड़ी गिरी तो रसिक बिहारी को वो पुजारी गाली देकर करने लगे, अरे सारे तू पगड़ी बांधने में ही 2.5 घंटा कर दिया है, तो और मुझे दिन में कुछ काम है कि नहीं? तेरे लिए भोग बनाना है, ये कपड़े बनाना है, ड्रेसिंग करना है, आरती करना है, पगड़ी बांधने में ही 2.5 घंटा कर दिया। सारे अभी पगड़ी नहीं सिर पर रहने दी तो मैं कभी पगड़ी नहीं पहनाऊंगा। इतना कह के 13वीं बार जब पगड़ी बांधने लगे तब कृष्ण ने सोचा कि अब हिलाया तो ये डांटेंगे नहीं। साक्षात्कार इसे कहते हैं। आज भी कृष्ण हमारे साथ बात कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, परंतु भाव होना चाहिए, वात्सल्य भाव, चाहे माधुर्य, चाहे साख्य भाव, चाहे दास्य भाव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न। यदि कोई माता मुझे पुत्र मानकर ताड़न करती है, डांटती है, तो ब्रह्म स्तुति, तो ब्रह्मा जी की स्तुति से भी मुझे करोड़ों करोड़ों गुना आनंद उस माता की डांट सुनने में आता है। हरे मोर मन, उस माता की डांट मेरा मन हर लेती, मेरा हृदय हर लेती, चुरा लेती। मत तो भगवान के साथ प्रेम कीजिए। जीवन में हम बहुत बहुत व्यवस्था करने लगे, आयोजन किए, हजारों लोगों को एकत्रित किए, परंतु ये भाव उदित नहीं हुआ तो ये आयोजन, ये व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। यह कार्य करके हृदय में भाव आ रहा है, कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है, तभी इसकी सार्थकता है। नहीं तो नव उत्पाद ये यदि रति धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक सेन कथासुय। नवत्पाद ये यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। यह आयोजन, यह किया हुआ जितना भी कार्य है, सब केवल गधे के समान श्रम है। तो भक्तों जीवन में कुछ समय ऐसा निकालिए, कुछ शांति का समय, जिसमें हम कुछ सोच सके, भगवान को बारे में सोच सके, भगवान को वो समय दे सके। आज के लोग माला भी जपते हैं तो ट्रेन में आते जाते जपते हैं, भगवान के लिए कोई समय नहीं निकालते। भगवान चाहते हैं कि कोई मुझे देखे। मैं कल ही एक दृष्टांत दे रहा था कि हम लोग अपना काम करते हैं, उसमें ट्रेन में आते जाते कर लेते हैं, भगवान का नाम ध्यान कर लेते हैं। भगवान चाहते हैं कि कोई मेरे ऊपर ध्यान दे, कोई मुझे आरती करे, कोई मुझे खिलाए पिलाए, भगवान की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने 5 साधन बताए थे, उसमें एक साधन यह है अर्च विग्रह पूजन इत्यादि। तो मैं कल एक दृष्टांत दे रहा था, मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति को कहे कि पतिदेव मैं अब तक आपसे प्रेम कर रही थी, परंतु अब मैं प्रेम का लेवल बढ़ाना चाहती हूँ, अब मैं आपसे और प्रेम करना चाहती हूँ, इतना प्रेम करूंगी, इतना प्रेम करूंगी कि मैं आपका ध्यान करूंगी। पतिदेव मैं आपका ध्यान करूंगी और आपका नाम लूंगी। अब केवल ध्यान हो, ध्यान ही करती रहूंगी। अब भोजन भोजन इत्यादि हो, छोटे मोटे काम मुझे नहीं करना। बताइए पतिदेव की क्या हालत होगी। तो केवल बस सीधे आते जाते भगवान का नाम लो, ध्यान करो, ये है फल है। परंतु भगवान भी चाहते हैं ना कि कोई मेरी सेवा करे, पूजा करे, कोई मुझे चाहे। भगवान भी बहुत प्रेम और भाव के भूखे हैं। दीजिए प्रेम भगवान को देना चाहिए। आप कहोगे भगवान को क्या जरूरत है, भगवान को खाने की क्या जरूरत है। जरूरत भगवान को नहीं, हमें है। हम जितना भगवान को देते हैं, भगवान उससे उतना उल्टा करोड़ों गुना लौटाते हैं। प्राय सब लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भगवान के धाम में क्या कमी है। परंतु हम भगवान को लगाते हैं तो भगवान करोड़ों गुना हमें देते हैं। तो इस प्रकार से ये भाव होना चाहिए। देखिए हम आरती भी लेते हैं, हम आरती बहुत बार लेते हैं, बहुत बार बोल भी चुके आरती, लेकिन आरती का अर्थ क्या है। आर्त का अर्थ आप जानते हैं, आर्त का अर्थ होता है दुखी। जैसे गीता में कहते हैं ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त का अर्थ दुखी होता है। तो वे जो आरती भगवान को उतारी जाती है, तो आरती के पीछे भाव क्या होता है कि कृष्ण को हजारों लोग देखते हैं, मेरे कृष्ण को हजारों लोग देखते हैं, इसलिए हजारों लोगों की नजर कृष्ण को लगती है। इसलिए कृष्ण को जितनी भी नजर लगी है वे दिया के द्वारा सारी उतार लेते हैं। और भक्त का भाव क्या है कि कृष्ण का सारा दुख, आर्त अर्थात कृष्ण का सारा दुख मैं मेरे सिर के ऊपर लेता हूं। ये भक्त का भाव है। तो ये भाव है। परंतु होता क्या है, कृष्ण कभी दुखी होते हैं? अरे कृष्ण का अर्थ, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कृषि भू वाचक और नचो निवृत्ति वाचक, जिसमें नित्य निरंतर आनंद निकलता रहे। तो भक्त का भाव यह है कि कृष्ण का दुख हम ले रहे हैं, परंतु कृष्ण से आनंद के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा है। इसलिए जब हम लेते हैं तो आनंद आ जाता है, इसलिए व्यक्ति उसे आनंदित होता है, आनंद प्राप्त करता है। तो भक्तों इस भक्ति करने के पीछे बहुत बहुत भाव है। तो भागवत और गीता के द्वारा इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर यशोदा मैया ने वात्सल्य भाव में कृष्ण को बांधा है, कृष्ण को प्रसन्न किया है। हमें भी कृष्ण के साथ प्रतिदिन कृष्ण की प्रतिमा, कृष्ण का विग्रह, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हो, गौर निताय हो, चाहे राधा कृष्ण हो, जो भी हो, उनके साथ प्रेम करना, आदान प्रदान करना, बातें करना, ये सब भाव का आदान प्रदान होना चाहिए। केवल तपस्या करने से तो हृदय कठोर होता है। इस हृदय को पिघालने के लिए भगवान के साथ कुछ प्रैक्टिकल आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे यशोदा मैया वात्सल्य भाव में कृष्ण को प्राप्त की है और कृष्ण को बांधी हुई है। तो मैं कह रहा था यह दृश्य भक्तों के लिए बहुत सुंदर दृश्य है। और इस लीला को, इस दृश्य को भक्त लोग अपने बुद्धि में बिठाते हैं और भक्त लोग बड़े प्यार से और बहुत प्रेम से गाते हैं। तो आज के प्रवचन का अंत हम इस भजन के साथ करते हैं। सब लोग मेरे पीछे ये भजन गाइए, बहुत सुंदर ये भजन है। पहले सुनिए और बाद में दोहराइए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम।
नमामीश्वरम
सच्चिदानंद रूपम
लसत
कुंडलम
गोकुले ब्रजमानम।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्।
यशोदाभियो लूखलाधवमानम्,
यशोदाभियो लूखलाधवमानम्,
यशोदाभियो लूखलाधवमानम्,
यशोदाभियो लूखलाधवमानम्।
परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या
परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या
परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या
परामृष्टमत्यन्तो तद्रुत गोप्या
रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तम्
गन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं रुजन्तम्
कराम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्
कराम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्
मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ
मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ
मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ
मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ
स्थित देवदामोदरं भक्तिबन्धम्
देवदामोदरं भक्तिबद्धम्
इति द्विस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
इति द्विस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम्
स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम्
तदीय शीतागेषु भक्ते जिते त्वम्
तदीय शीतागेषु भक्ति जित त्वम्
पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे
पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे
वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा
वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा
न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपिह
चान्यं वृणेऽहं वरिषादपिह
इदं देव पूर्णार्थ गोपाल बालम्
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 सदा मे मनस्यावि रास्तां किमन्ये सदा मे
मनस्यावि रास्तां किमन्ये
इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले
इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले
वृतं कुन्तले स्निग्ध्य रक्तेश गोप्या
वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश गोप्या
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभे
मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभे
नमो देवदामोदरानन्त विष्णो
नमो देवदामोदरानन्त विष्णो
प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम्
प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम्
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिन बतानु
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 गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षि दृश्य
गृहाणेश मामज्ञ मे द्यति दश
कुबेरात्मजो बद्ध मृत्ये त्वय
कुबेरात्मजो बद्ध मृत्ये वयत्य
त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च
त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च
तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ
तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ
तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ
तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ
नमो क्षेग्रहो मेस्ति दामोदरेह
नमो क्षेग्रहो मेस्ति दामोदरेह
नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने
नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने
नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने
नमस्ते सुदामने स्फुर दीप्ति धामने
त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने
त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने
त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने
त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये
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 नमो राधिकाये त्वदीया
प्रियाये
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये
नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं
नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं
नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं
नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं
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 यशोदाभियो लोकलाधवमानं
यशोदाभियो लोकलाधवमानं
यशोदाभियो लोकलाधवमानं
यशोदाभियो लोकलाधवमानं
परामृतमत्यन्ततो धृत्यगुप्या
परामृतमत्यन्ततो धृत्यगुप्या
परामृतमत्यन्ततो धृत्यगुप्या कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल
गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल
गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल Radhe Shyam, 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 Radhe Shyam,
Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam,
Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam,
Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam,
Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jaya Jaya Prabhu Pad, Prabhu Pad, Prabhu Pad, Prabhu Pad.
Jaya Jaya Prabhu.
दामोदर अष्टकम की
जय।
बहुत सुंदर सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, इसका भाव इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, परंतु अंत में इनका यही कहना है, मैं कृष्ण को प्रणाम नहीं करता हूं, कृष्ण जिस उखल से बंधे हैं उस उखल को भी प्रणाम नहीं करता हूं, न तो मैं यशोदा मैया को प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं उस रस्सी को जिस रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया है। नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने, मैं रस्सी को प्रणाम करता हूँ भाई, वह रस्सी धन्य है जो कृष्ण के साथ बंधी हुई है, धन्य है वह रस्सी। तो इस प्रकार से भक्तों का भाव है, हमें भी इसी भाव में भगवान का भजन करना चाहिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अंत में आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में, कुछ लोग कई सालों से जुड़े हैं, कुछ लोग 6 महीने से, 2 महीने से, कुछ लोग भागवत सप्ताह के बाद इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो हमसे संपर्क जब से आप सबका हुआ है और हम सब लोग कृष्ण कथा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान हमसे कोई यदि भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो कृपया करके आप क्षमा कीजिएगा। ये निश्चित है, प्रायः मुझसे गलती होती रहती है, मैं बहुत बड़ा अपराधी जीव हूँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो जीव नरक से आता है उसकी वाणी बहुत कड़वी होती है, तो मैं मानता हूं कि मैं नरक से आया हूं, मेरी कठोर वाणी है और प्रायः मैं अपराध करते रहता हूं, भूल करते रहता हूं। और मेरी सबसे बड़ी भूल मैं आपको क्या बताऊं, यही है कि मैं यहां पर बहुत लेट आता हूं। उस लेट आने के पीछे और किसी का हाथ नहीं, केवल मेरे में ही यह कमी है, और मेरी इस भूल के कारण कई लोग बेचारे दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर परेशान होते हैं और 11-11 बजे तक बैठते हैं। तो इस साल में आपको बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दिया, इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे प्रवचनों में, हमारी कथाओं में कुछ कटु शब्द किसी को मैंने कह दिए हो, किसी के हृदय में लग गए हो, तो आप कृपया करके क्षमा कीजिएगा। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, मेरा एक ही भाव होता है कि मैं मेरे कृष्ण को, मेरे आराध्य भगवान को सबके सामने प्रकट करूं, और उस प्रकट करने में जो कोई रास्ते में आता है तो कभी कभी कठोर शब्द निकल जाता है, तो भाव यही है। और आप सब भक्तों के चरणों में पुनः पुनः बारंबार क्षमा याचना चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। और प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। वास्तव में आशीर्वाद और कृपा हम में कुछ है ही नहीं कि आपको कुछ आशीर्वाद और कृपा दे। आशीर्वाद और कृपा भगवान की होती है, भगवान देते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं राधा गिरधारी जी से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से, गौर निताय प्रभुपाद जी से कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा भक्ति दे, सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, सुख संपदा सब कुछ दे, आपके सभी पुत्रों को पत्नियों को खुश रखे, आपके जीवन में कभी झगड़ा ना हो, दुख ना आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इनके अलावा हम कर भी क्या कर सकते हैं। और क्योंकि हम आपको बहुत कुछ कथा सुनाए हैं, बहुत कुछ प्रवचन किए हैं, इसलिए मेरा भी अधिकार बनता है कि आपसे कुछ मांगू। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपसे बहुत धन नहीं मांग रहे हैं कि आप इतना धन दे दीजिए। आप यदि मुझ दास को देना चाहते हैं तो बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह भक्ति कर सकूं, मैं भी आप लोगों की तरह भक्त बन सकूं। बस यहाँ पर आता हूँ तो एक ही ये भावना होती है कि आप जैसे भक्तों को कुछ सुनाकर भगवान की कृपा से मैं भक्त बन पाऊंगा। तो बस इसी आशा और अभिलाषा के साथ यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले साल में मैं आपकी तरह, मुझे बहुत बड़ा भक्त नहीं बनना है भाई, और मैं बन भी नहीं सकता हूँ, इतना पापी हूँ, परंतु कम से कम आप लोगों की तरह भी बन गया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो आप लोग अपने चरणों में रखिएगा। और अब आज के बाद हम लोग एक महीने के बाद मिलेंगे। इस एक महीने में कुछ लोग अपने गांव में जाएंगे, कुछ लोग यहीं रहेंगे, कुछ लोग नए लोगों के बीच में जाएंगे। तो हो सकता है कि भक्ति में से गिरने का कुछ मौका चांस हो सकता है। और मेरे हृदय में तो बहुत बड़ा दुख है क्योंकि प्रतिदिन भक्तों का संग मुझे होता है और एक महीने तक आप भक्तों का संग नहीं मिलेगा। राय रामानंद को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा एक बार कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से अलग होना। भक्तों से अलग होना, इससे बड़ा दुख संसार में है ही नहीं। तो आप भक्तों से एक महीने के लिए अलग होना है, इसलिए हृदय में बहुत बड़ा दुख है। और भय इस बात का है कि भक्तों से अलग होकर भक्ति से गिरने का चांस रहता है। परंतु आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, यदि तीन चीज का ध्यान रखे तो भक्ति में पतन होने से हम बच सकते हैं। पहली बात, प्रतिदिन महामंत्र का जप करते रहिए, छोड़िएगा मत। फिर कहीं भी जाते हो तो प्रभुपाद जी की पुस्तक साथ में लेकर जाइए। प्रभुपाद जी आज भी अपने पुस्तकों में विद्यमान है, यदि उनकी पुस्तक पढ़ते रहेंगे तो भक्ति से गिरने का कोई चांस नहीं है। और तीसरी बात, चाहे कहीं भी जाते हो, अपने गांव में जाते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो भोजन में ध्यान रखिएगा, प्रसाद के अलावा कुछ मत स्वीकार कीजिए। ये तीन चीज का यदि ध्यान रहे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो दिवाली के बाद यहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। देखिए, भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, परंतु गिरना व्यक्ति झटके में गिर सकता है। जैसे पानी को यदि 14 माल की बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाना है तो उसके लिए कहीं मोटर मशीन के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है, परंतु गिराने के लिए एक झटके में गिर जाएगा। तो भक्ति में बढ़ना ये बहुत मुश्किल है, परंतु उसे गिरना आसान है। ध्यान रहे, जो भी गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिली है, इस भक्ति लता बीज को हमारे हृदय में संभाल के रखे। श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन, श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय में रखे इस भक्ति। ये भक्ति बहुत अमूल्य है। रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में कहते हैं, सुदुर्लभ भक्ति बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती है। ये रास्ते से करोड़ों लोग पसार हो गए परंतु यहाँ नहीं आ सके, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो हमें मिली है तो इसको हमें संभाल कर रखना चाहिए। सब भक्तों को ध्यान रहे, एक महीने के बाद हम यहाँ पर मिलेंगे। और हमारे सभी कार्यक्रम एक महीने के लिए अभी रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कुछ लोग गाँव में जा रहे हैं।